फॉलो फादर का। तो ऐसा अनुभव हुआ कि बैटरी चार्ज हुआ कि जैसे मैंने अपने शरीर को भूल के मैं जो अव्यक्त वतनवासी हुआ, ऐसा मेरा योग में ऐसा अनुभव हुआ। तो अरे घर में जाते हैं तो थोड़ा वातावरण चेंज हो जाता है लौकिक परिवार में, तो थोड़ा डाउन आ जाता है टेम्परेचर। फिर अभी यही लक्ष्य रखा है, संकल्प रखा है कि अभी ये दफे डाउन नहीं होना है और अच्छी तरह पूरा चार्ट भरना भी है और फॉलो फादर बनकर दिखाना है। ओम शांति।
थैंक यू भाई सर, बहुत अच्छा। और अभी हम लास्ट हम और भी अनुभव लेंगे क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन हम और भी अनुभव सुनेंगे इसलिए, और चाहेंगे कि हमारी जो सेंटर की दीदियां आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, वो जरूर बताएं, क्योंकि जब वो जाते हैं सेंटर पे तो भाई बहनों को भी बहुत उमंग, क्योंकि खुद उमंग में जाते हैं तो फिर भाई बहनों को भी हम वो चीज उनको प्रेरणाएं दे पाते हैं।
ओम शांति। हम रश्मि खरे मुंशी पुलिया इंदिरा नगर से आए हैं। मेरे को इस पार्क भट्टी से जो सबसे ज्यादा एक अचीवमेंट मिला है वो हमारी पारिवारिक जिंदगी हो या फिर ऑफिशियल लाइफ हो, मन और बुद्धि का कैसे हम बैलेंस रखेंगे। और इनफैक्ट जब हम आ रहे थे अपनी छुट्टी अप्लाई करे थे तो मैंने जो है लोगों ने पूछा कि क्यों जा रहे हो, मैंने अपना जो टॉपिक चूज किया है वो शायद बाबा ने उसी दिन एहसास करा दिया था कि मेरे को अपने सेल्फ में जब हम कोई रियलाइज करेंगे, अपना परिवर्तन करेंगे, तब हम विश्व को कुछ दे पाएंगे। बस इसीलिए जा रहे हैं, यही रिसर्च करना है। और मुझे लग रहा है कि मुझे बाबा ने ही टच किया है और हम अपनी लाइफ में बाबा को हर वक्त पकड़े हुए हैं और वैसे ही चलते रहेंगे। ये एक हमको बहुत ज्यादा प्राप्ति हुई है। ओम शांति।
तो अभी हमने दो कम से कम चार भाई बहनों के अनुभव सुने, तो अभी श्रीकांत भाई और अंबिका दीदी भी बीच में पहुंच गए हैं। तो दीदी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भाई बहने शेयर कर रहे हैं और ऑडियंस से श्रीकांत भाई का कहना है और भी दो अपने अनुभव, दो भाई इस तरफ आके खड़े रहे और जो सेंटर की बहने हैं, अभी एक दीदी मेरे बीच में आए भी थे तो उनको भी कहूंगी कि वो भी आ जाए।
ओम शांति। माय नेम इज बीके श्वेता, आई एम फ्रॉम कोल्हापुर। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग स्पार्क मीटिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू थैंक ऑल द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हु अरेंज्ड दिस मीटिंग। मैं 3 साल से थी तब से माँ के साथ आ रही हूँ सेंटर पे। तो बहुत नए नए आइडियाज मिले पुरुषार्थ के लिए भी और सेवा, बाबा की सेवा के लिए भी। और जब पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे देख रहे थे तो मुझे याद आया हमारे कोल्हापुर सेंटर पे सुनंदा दीदी जी, वो भी यूथ मीटअप्स अरेंज करते हैं। और लास्ट मंथ सम मंथ्स अगो द टॉपिक वाज साइलेंस इन साइंस, तो उस पर भी चिंतन चला था। पर और भी कितने हम रिसर्च के बाय ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च और भी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बहुत प्रेरणाएं मिली। सो थैंक यू। ओम शांति।
बहुत अच्छा, थैंक यू सिस्टर। ब्रदर आजिएगी प्लीज, आइए। आप इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं उनको देख के हम कितने उमंग में आ रहे हैं, हम ताली बजा के भाई बहन जो हमको सुना रहे हैं।
ओम शांति। 15 साल पहले ज्ञान में आए, बाबा का बच्चा बन गए और 12 साल से इस पार्क में आए, वैज्ञानिक बन गए। 4 दिन का सेशन हमने अटेंड किया, भरपूर पूरा ईमानदारी से। कल शाम की टाइम हम योग में बैठे हुए थे और बाबा से अनुभूति कर रहे थे। बाबा हम बहुत खुश है, भरपूर हो गए। बाबा ने एक विशेष अनुभूति करा दी कि अपने सब भाई बहनों को देते हुए जाना, वही मैं देने आया हूँ। लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, मैंने उस पर अपना लेवल लगा दिया है, वैज्ञानिक हूँ, लेवल लगाया। वो लेवल क्या है? वो लेवल ये है, हमने 5 शेर बनाए, उसमें बाबा की अनुभूति, बाबा की चाहत, बाबा की आशा और हमारा रूहानी प्यार मिला दिया। जब जाके एक में नहीं हो रहा था, 5 बनाना पड़े, 5 कंबाइंड है एक दूसरे में, एक साथ बोलूंगा आप एक ही पे ताली मत बजा देना, चार उड़ जाएंगे, नहीं तो पांचों एक ही सीरीज में बोलूंगा, बोलने के बाद फिर आप बाबा को अपनी खुशी जाहिर कर देना। तो रेडी, जिंदगी में कभी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो जीवन सफल करो शिव नाम से, ये शिव नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, गम के बादल छट जाएंगे और खुशियां लहर लाएगी, क्यों भटक रहे हो इस मायावी दुनिया में, ले लो उस मालिक का नाम तभी आपकी रूह चैन पाएगी, सोचता क्या है पगले, एक दिन ऐसा आएगा जिंदगी साथ छोड़ जाएगी, बड़े बड़े मगरमच्छ बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी झील में, हम भी कुछ ऐसा करें समा जाए बाबा के दिल में, दुनिया कहती है खाली आए हैं खाली ही जाएंगे, हम दुनिया वालों को कह दो खाली आए हैं बाबा के साथ जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू भैया।
अपना परिचय, अपना परिचय, ब्रह्मा कुमार घनश्याम भाई खंडवा, इंदौर जोन मध्य प्रदेश, वो मशहूर सिंगर किशोर कुमार वाला खंडवा मधुबन के लिए, वो टोली वाला खंडवा इस पार्क के लिए, लोकल चैप्टर वाला खंडवा, खंडवा खंडवा। ओम शांति।
थैंक यू खंडवा। चलिए बहुत अच्छा, अपना इतना उमंग दिला दिया और खंडवा को भी सामने प्रत्यक्ष में यहाँ पर हमारे बीच में ला दिया। तो अभी हमारे बीच में सिस्टर है और मैं सिस्टर को भी कहूंगी कि आप अपना अनुभव बताएं।
ओम शांति। सिल्वर जुबली के निमित्त हमारे यहाँ वीणा बेन शर्मा जो रिपोर्टर है, तो उनके उमंग उत्साह से, और उसने कहा दीदी आप आकर के देखो फिर हम ये लोकल चैप्टर शुरू करेंगे। तो भाईंदर सेवा केंद्र मुंबई में, यहाँ पर ये सेवा केंद्र पर कई ऐसे बहुत अच्छे योगी और समझदार बहुत बाबा के बच्चे हैं जो यहाँ पर भी आए हैं। तो हम आज से इस सिल्वर जुबली से हम लोकल चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि सबका अनुभव सुन करके हमें ऐसा लगा कि ये तो बहुत प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात है, ये तो मैंने कहा कि ये भट्टी से भी इसमें अच्छा अनुभव होता है। तो मैं बहुत बहुत मुझे खुशी हुई, इसलिए कहते हैं जिंदा है तो खानदान को रोशन करने के लिए जिंदा है, जिसने ये जीवन दिया उसका नाम रोशन करने के लिए जिंदा है। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू दीदी। तो अभी हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और जो प्रेजेंटेशन हम देखने वाले थे अभी वो रेडी हो गई है, तो मैं ब्रदर को कहूंगी आप उसको बताएं। कल्याण की सिस्टर हमारे बीच में हो तो प्लीज आ जाए।
ओम शांति। यहाँ पर ये स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन का एनुअल रिपोर्ट है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ष भर में जो भी सेवाएं हुई है उसका रिपोर्ट है।
सब जो देख रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन सेवा पूरे भारत वर्ष में कल्याण सेंटर और दूसरे सेंटर के लिए उसकी रिपोर्ट
जाने का, जब होगा मधुर मिलन
और ज्ञान का, जब होगा मधुर मिलन
तो आएगा स्वर्णिम सवेरा, महकेगा जग
पिता। फीडबैक फॉर्म का फॉर्मेट है जो पूरे इंडिया में जहाँ भी होता है एग्जीबिशन वहाँ पे भर के लेते हैं, और ये फीडबैक फॉर्म में 100% पॉजिटिव फीडबैक आया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कॉलेज के स्टूडेंट पूरी एकत्रित होकर खेलते हैं। बाहर जहाँ भी हुआ है भी। कल ही नया सेट लेके जा रहा है, एक बॉम्बे की तरफ से मलाड सेंटर से डिमांड आया है, अभी नया सेट वहाँ पे पहुँच रहा है, कल रवाना होगा मधुबन से और वहाँ पहुँच जाएगा। नया सेट का ऑर्डर आया है स्पिरिचुअल साइंस शिवरात्रि में एग्जीबिशन में लगेगा। तो इस तरह से हर साल कोई नया नया सेट बढ़ते जाता है ऑल ओवर इंडिया में। अभी तक 22 सेट्स घूम रहे हैं पूरे भारत में इस तरह के, अभी 25 हो जाएंगे बहुत जल्द।
बहुत बहुत थैंक्स कल्याण के भाई बहनों का और उनकी टीम का। तो एक बार हम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हुए ताली बजाते हुए उनको बहुत थैंक्स देते हैं, और साथ ही साथ 2020 का ये ईयर है और गुड विशेस देते हैं कि जितने सेट ब्रदर अभी बता रहे हैं उससे ज्यादा सेट एक दो महीने के अंदर और भी हो जाएं, तो बाबा की सेवा और जल्दी से हम कर सकते हैं। तो अभी हम इस साक्षात्कार मूरत रिट्रीट में जो हम आए हुए हैं, बैठे हैं, अभी हम इसको आगे प्रोग्राम को आगे लेते हैं। हमारे बीच में सुरेश भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा उनका योग का प्रयोग है। सुरेश भाई अपने मृत्युंजय भाई के साथ रहते हैं और भाई जी जब भी कहीं आना जाना होता है तो आप उनके साथ रहते हैं, और बहुत अच्छा एक योग का अनुभव जो मैं थोड़ा सा भी नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि आप उनके मुख से सुनेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कल सूरज भाई ने हमें बताया कि योग को हम ऐसा नहीं है सिर्फ बैठ के ही करें, हम कर्म में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम कर्म योग कहते हैं। तो किस तरह से आपने उस योग के प्रयोग से अपने जो भी फेस आई, सिचुएशन आई, उसको बहुत अच्छे से आपने फेस किया। तो सुरेश भाई,
ओम शांति। सभी तीन बार ओम शांति बोलिए। जानकी दादी हमेशा क्लास में तीन बार ओम शांति कहते हैं, तो ऐसे ही आप सभी बोलिएगा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहला ओम शांति, हम साकार वतन में हम और आप सभी ब्राह्मण बच्चे हैं, पहले आपके लिए ओम शांति है। दूसरी ओम शांति है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्म बाबा हम सबको देख रहे हैं, उनके लिए भी ओम शांति। तीसरा ओम शांति है, मूल वतन में शिव बाबा हम सबको देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ओम शांति, क्योंकि बाप और बच्चों का संबंध है ना, इसलिए हमारा संबंध हमेशा जुड़ा रहेगा ओम शांति तीन बार बोलने से। तो मेरे को ज्ञान में आते हुए 30 इयर्स चल रहे अभी, मैं जब से ज्ञान में आया तब से मेरे को चार प्रकार का निश्चय बुद्धि 100% से ऊपर हो गया। पहले निश्चय बुद्धि है स्वयं के ऊपर, दूसरा निश्चय बुद्धि है बाबा के ऊपर, तीसरा निश्चय बुद्धि है ड्रामा के ऊपर, चौथा निश्चय बुद्धि है ब्राह्मण परिवार के ऊपर। जब से मैं ज्ञान में आया तब से मेरे को अच्छे से ज्ञान समझ में आ गया, तो मैंने फोकस रखा। तो अभी तो ड्रामा अनुसार हमें बाबा के बच्चे तो मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा के बच्चे बने, तो हमें अभी करना है जन्म जन्मांतर का विकर्म का विनाश करना है। इसलिए मैंने फोकस रखा, पहले अमृत वेले के लिए फोकस रखा, कुछ भी हो जाए मुझे अमृत वेले कुछ भी मिस नहीं करने का। दूसरा है मुरली क्लास, तीसरा है शाम को नियम शाम का योग। इसको मैंने जब से ज्ञान में आया तब से कंटिन्यू मेरा जीवन में रखा था। तो इसके आधार से ये कि ब्राह्मण परिवार में हरेक को अपना अपना हिसाब से टेस्ट पेपर तो आता ही है। मैं जब से मधुबन आया 25 साल से हो गया, 25 साल से मधुबन में बाबा का सेवा में उपस्थित हूँ। तो ड्रामन सर मैंने एक बार मृत्युंजय भाई को अहमदाबाद से मधुबन कार में लेके आ रहे थे 2015 मार्च 3 तारीख। तो अहमदाबाद से मधुबन आने के लिए 3 घंटे का जर्नी है कार में, तो हमारा 1.5 घंटा जर्नी हो चुका था उस समय, रात को 11:30 बजे हो चुका था। तो उस समय क्या हुआ, तो मैं आगे गाड़ी में भाई साहब को साइड में बिठा करके आगे लेके आ रहा था, तो भाई साहब रात को 11:30 बजे नेचुरली नींद आ जाती है, तो भाई साहब ने क्या किया, सीट को लंबा फोल्ड करके लंबा सो गए थे। तो मैंने आराम से बाबा के याद में गाड़ी चलाते आया, तो मेरा स्थिति बच्चा बहुत अच्छा था। मैं लोटस हाउस में शाम को योग करके भी वहां से निकले थे, एकदम अलर्ट एकदम एक्टिव होके मैं गाड़ी चला के बाबा के याद में आ रहा था। उस समय 1.5 घंटे के बाद मेरा कार के पीछे और एक कार आ रहा था, तो वो कार का हेडलाइट मेरे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा था मिरर में। तो मैंने क्या किया, उसको आगे जाने के लिए सिग्नल दिया, वो आगे जा नहीं रहा था, धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा था। फिर मैंने गाड़ी को स्लो किया, तो उन्होंने क्या किया, आगे जाने के लिए शोर किया। बाद में उन्होंने गाड़ी स्लो करके कभी लेफ्ट में कभी राइट में कभी लेफ्ट में कभी राइट में ऐसे कम से कम 5 किलोमीटर तक आया। उसके बाद दूसरे एक गांव आया, वहां स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था, फिर मैंने गाड़ी को स्लो किया। स्लो करते अचानक वो गाड़ी वाला हमारा ओवरटेक करके सामने मेरा जैसे नजदीक जैसे अभी एक गाड़ी को टच कर रहा है, ऐसे मेरे को फीलिंग हो रहा था। मैं सोच रहा था वो कुछ रास्ता भूल गया होगा, तो रास्ता पूछने के लिए आ रहा है, चलो उसको मैं गाड़ी रोक करके उसको मैं रास्ता बता देता हूँ बोल करके गाड़ी के स्टॉप किया। तो भाई साहब तो नींद कर रहा है, वैसे कुछ पता नहीं था, वो हमारा गाड़ी के सामने रोक दिया। तो ड्राइवर डोर ओपन करके दौड़ के मेरे पास आया, आकर के बोलते हैं आपके वजह से पीछे कार नीचे खड्डे में गया, आप गाड़ी को क्यों नहीं रोका, मेरे को पूछता है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमारा गाड़ी को टच भी नहीं हुआ, हमारा वजह से गाड़ी कैसे नीचे जाएगी। मैंने ऐसे आस्ते आस्ते पैर से मन को बताया था, तो उन्होंने क्या बोला, आप ज्यादा बात नहीं करो, गाड़ी से बाहर आ जाओ, बोल करके जॉब में हाथ लगा के पिस्तौल निकल करके मेरा कान के पास ऐसे रख दिया। तो मैंने फिर साक्षी होकर देख रहा था, मैं कोई डरा भी नहीं था, तो मैंने उसको आत्मा को देखने अभ्यास किया। मैं सोचा कोई तो भूत तो है नहीं, तो हमारे जैसे भाई है तो क्या है, तो उसमें डरने की क्या बात है, वो तो डराने के लिए आया होगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने इसे उसको दृष्टि दिया। उसके बाद उस गाड़ी में चार लोग थे, उसमें दूसरा भाई आ गया, आकर के बोलते अब ज्यादा बात नहीं करो, गाड़ी से बाहर आ जाओ। तो मैंने उसको भी दृष्टि दिया, डरा भी नहीं था। उसके बाद तीसरा व्यक्ति आया, वो बोलते अब गाड़ी बंद करो, बोल करके गाड़ी बंद करके स्वयं हाथ लगाया, गाड़ी बंद करके चाबी अपने पास ले लिया, तो गाड़ी का इंजन बंद हो गया। तो इंजन बंद होते ही भाई साहब को नींद खुल गई, भाई साहब ऐसे उठ के बैठ गया, तो वो लोगों ने भाई साहब को देख लिया। पहले मैं समझता हूँ वो जो पीछे से फॉलो करके आ रहे थे, तो वो भाई साहब को देखा नहीं था, वो हमारा गाड़ी का नंबर भी था 0001 था, 0001। तो वो सोचा होगा इसमें कुछ वीआईपी गाड़ी है, इसमें कुछ माल पानी होगा, चलो इसको हम रोक करके अटैक करके ले जाएंगे, ऐसे कुछ उनका संकल्प होगा। लेकिन जब भाई साहब बैठ गया तो उन्होंने भाई साहब को देख लिया, तो वो लोग क्या किया, गाड़ी के पीछे गए, पीछे जा करके आपस में प्लानिंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पीछे जा करके वही पिस्तौल से आसमान की ओर फायरिंग किया। तो फिर भाई साहब को समझ में आ गई, तो चोर लोग है तो ये कुछ भी करने के तैयार होगा, अभी हमें दूसरों को हेल्प लेना, बोलकर भाई साहब गाड़ी से उतर के रोड पे आ गया। तो फिर मैंने बेल्ट पहना हुआ था, साक्षी होकर के देख रहा था, तो उस समय भाई साहब दो पीछे से एक ट्रक वाला आया, वो ट्रक वालों को भाई साहब ने रोक दिया, चलो उनको हेल्प ले लेंगे, तो तब तक ये लोग डर के भाग जाएंगे ऐसा। उस समय वो लोग आपस में प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद ट्रक वाला नजदीक आया, देखा, फिर वापस चले गया। वो लोग सोचे होंगे इनके ग्रुप होगा, ये हम लोग गाड़ी को लूटने के लिए आया बोल करके, वो ट्रक वाला ऐसे सीधा चला गया, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अभी क्या करे बोल करके भाई साहब पीछे देखा, तो जीप वाला आया, जीप वाला आकर के हमारा गाड़ी को सामने स्टॉप किया। तो भाई साहब उनके पास जाकर के समाचार बता रहे थे, ऐसे ऐसे हम लोग अहमदाबाद आ रहे थे, तो हमारा गाड़ी को रोक करके हमारे सामने फायरिंग कर रहे, शायद ये लोग चोर लो हो सकता है। फिर बाद में ऐसे भाई साहब उनको समाचार बता रहे थे। मैं कुछ भी हो जाए, मुझे डिसाइड किया था मैं गाड़ी से मुझे जाना नहीं है, क्योंकि गाड़ी से बाहर जाएंगे तो खतरा है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैंने बाबा को याद करके भाई साहब को देख रहा था। तब तक इधर से दूसरी फायरिंग आया मेरे कान के पास, इधर फायरिंग किया तो मेरे को ऐसा लगा कोई पत्थर मारा, ऐसे फीलिंग आया। तो मैंने सोचा इधर कुछ लगी, तो मैंने ऐसे हाथ लगाया था, अपने इधर धीरे धीरे खून आना शुरू हो गया, गीला हो गया। तो मेरे को लगा अभी खून आ रहा है, तो मेरे कान के अंदर जा रहा है, तो अभी इसको मैं कान के अंदर जाना नहीं है, इसको रोकना है। तो फिर भाई साहब को फायरिंग का आवाज सुनते ही भाई साहब ने क्या किया, मेरे तरफ मोड़ के देखा, तो मेरे ऐसे हाथ पकड़ो, मेरा सिर ऐसे हो गया। तो भाई साहब को लगा इनको इंजरी हो गया, ये लोग ने फायरिंग कर दिया। ये लोग क्या किया, फायरिंग करके गाड़ी की चाबी लेके भाग गए वहां से, तो जीप वाला को रोकने देख कर भाग गया। उसके बाद मेरे को तो इंजरी हो गया। तो फिर बाद में भाई साहब मेरे पास दौड़ के आए, तो भाई साहब मेरा गाड़ी में डिक्की में भाई साहब का बैग में टॉवल था, वो टॉवल निकल के मेरे पास आए, तो मेरे जैसे मुंह में जैसे इतना पानी क्यों भर रहा है मेरे मुंह में, ऐसे सोच करके मैंने सोचा अभी तो मेरे को इंजरी हो गया, चलो अभी हॉस्पिटल में जाना है, अभी पुलिस को फोन करना है, एम्बुलेंस को बुलाना है। तो भाई साहब तो नींद में का मूड में था ना, तो फिर मैंने भाई साहब बोला ऐसे एक काम कर लीजिए, एम्बुलेंस को फोन करो 108 में, और पुलिस को फोन करो 100 नंबर पे। ऐसे मैंने जैसे मुंह खोला तो मुंह में जो पानी के जगह में खून स्प्रे हो गया, पूरा खून भर गया था मुंह में। तो क्या हुआ, बुलेट जो यहाँ लगी ना वो मुंह के अंदर जाकर यहाँ फंसा हुआ है, मुझे पता नहीं एक्चुअली। तो मेरे को लगा यहाँ कुछ लगी है। तो उसके बाद भाई साहब जब मुंह ओपन कर बोला तो पूरा खून पर देखते ही भाई साहब को बहुत घबराहट हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर बाद में क्या हुआ, भाई साहब मेरे को टॉवल दिया, तो मैंने ऐसे पकड़ा। तो फिर बाद में भाई साहब ने बोला, तो भाई साहब ने फोन करना चालू किया, तो मुझे भाई साहब ने फोन करना चालू किया, अभी मुझे क्या काम है, मुझे तो अभी शरीर चुनने के लिए तैयार करना है, वही काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंजर तो हो गया, खून तो नॉन स्टॉप बह रहा है, जैसे नलके में पानी आ रहा है ना, नाक में भी आ रहा है, मुख से भी आ रहा है। तो अभी क्या करें, अभी मैं सोचा अभी चलो अभी अंतमति सौगति, अभी अचानक पार्ट मेरा सामने आ गया, अभी मुझे ऑफिस घर जाना है, ड्रामा अचानक पार्ट अब घर जाना है। अभी देखिए पूरा सेशन में मैंने सुन रहा था, अचानक पार्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है, एवरेज रहना है। तो अभी मुझे वो पार्ट पहले बाबा का जो अव्यक्त वाणी डायमंड में बाबा ने सुनाया, मेरा बुद्धि में बैठा हुआ था, अचानक पार्ट शायद रोड में एक्सीडेंट में हो सकता है, नहीं तो हार्ट अटैक हो सकता है, इनके लिए अचानक पार्ट आ सकता है। लेकिन वो घड़ी मेरे को याद आ गया, अभी अचानक पार्ट मेरा सामने आ गया, अभी मुझे अभी वापस घर जाना है। बस अभी मैंने भाई साहब को बोल दिया, भाई साहब फोन करना चालू कर दिया। मैंने क्या किया, सारा संकल्प को समेट गया, एक संकल्प भी व्यर्थ संकल्प आने नहीं दिया, पूरा संकल्प समेट करके बिंदु बन करके वही आत्मस्मृति में सीधे बॉडी से डिटैच होकर वतन में जाके बाबा के सामने बैठ गया। मैंने सोचा अभी शरीर छोड़ने से पहले मैं फुल कॉन्शियस में हूँ, बेहोश नहीं हुआ था मैं, शरीर छोड़ने से पहले बाबा के याद में शरीर छोड़ना ना, अंतमति सुगति हो जाएगी। चलो मैंने चला अभी वतन में बाबा के बाद में बाबा के पास जाके बैठ जाता हूँ, बोल करके बॉडी से डिटैच होकर वतन में जाके, जैसे हम योग में जाके वतन में बैठते हैं ऐसे बाबा के पास जाके बैठ गया। तो वहां बैठते ही सूक्ष्म अवतन में ब्रह्म बाप सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा टिम टिम चमक रहा है, मैं उनको गोद में जाके आराम से जाके बैठ गया। मैंने संकल्प आया तो हमारे दादियां देखी, मैं तो अभी आ रहा हूँ वतन में, दादियां देखी इतने यज्ञ में इतना सारा सेवा करके इतना कर्म पुण्य का कर्म जमा किया, वादिया अभी फरिश्ते हो गया होंगे दादियां। तो अभी बाबा ने बोला वतन में जग करके हम एडवांस पार्टी को याद करने से दादियां हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे संकल्प किया तो दादियां सब कहाँ चले गए, देखे प्रकाश मणि गए, दादी गई, मनोहर दादी गई, शांतमणि दादी गई, निर्मला शांत दादी गई, उनका मैंने 20 साल से मधुबन में मैं उनको पालन ले रहा हूँ, वो अभी दादियां कहाँ गए, फरिश्ते बन गए होगा वो तो अभी वतन में कहाँ है। तो मैंने ऐसे संकल्प किया तो चार दादियां मेरे सामने आई के वार्तास्त में ऐसे आकर के खड़े हो गए। मेरे को अंदर से इतना एनर्जी आ गया और मेरा योग पक्का हो गया। तो मैंने अंदर से फुल कॉन्फिडेंस आया, फुल एनर्जी स्टोर हो गया। मैं वतन में बैठ करके कार के अंदर मेरा मुख से बिल्डिंग निकल तो मैं साक्षी होकर के देख रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने इतना अनुभव करते ही 20 मिनट हो गया। 20 मिनट के बाद जैसे एम्बुलेंस में भाई साहब ने फोन किया ना तो एम्बुलेंस का आवाज मेरे को सायरन सुनाई दिया सब कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि बेहोश नहीं होता, साक्षी होकर मैं देख रहा हूँ पूरा। तो आवाज को सुनाई दी, मुझे ऐसा लगा अभी मैं वतन में हूँ, अभी मुझे एम्बुलेंस आए तो मुझे बॉडी में एंट्री करना पड़ेगा ना, तो एंट्री होकर के फिर मुझे अभी हॉस्पिटल में जाना है। अभी मेरे को वतन से नीचे उतरने के लिए हिम्मत नहीं है क्योंकि वहां इतना एनर्जी है। तो ये पुराना शरीर है, इसमें कौन निकल, इसमें वापस में क्यों इसमें एंट्री हूँ, ऐसे अंदर से मेरे को संकल्प आ रहा था। तो मैंने फिर निमित्त मात्र होकर के बाद में बॉडी में एंट्री किया। तो फिर मैंने डोर ओपन, बेल्ट ओपन किया, बेल्ट बांधा हुआ था, बेल्ट ओपन किया तो फिर जस्ट ओपन डोर ओपन करके जैसे पैर नीचे रखता हूँ पूरा बॉडी हिल रहा है और पूरा दर्दी घूम रहा है, क्योंकि 20 मिनट में 3 लीटर खून निकल गया मेरा, ऑलरेडी खून लॉस हो चुका है लेकिन एक स्टेप भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसके बाद एम्बुलेंस वाले मेरे को हाथ पकड़ के धीरे डोर ओपन करके सुला दिया। सुलाने के बाद फिर अंदर से ब्लीडिंग क्लॉट होते गया जो बाहर निकलना बंद हो गए। उसके बाद फिर बाद में मैंने भाई साहब को बोला, भाई साहब देखिए गाड़ी का चाबी नहीं है, मैंने वही मुख से बोल रहा हूँ फिर भी भाई साहब को, गाड़ी की चाबी नहीं है, वो लोग लेके गया, अब वापस हॉस्पिटल जाएंगे, वो लोग वापिस आके गाड़ी ले जाएंगे तो मधुबन की गाड़ी बाबा की गाड़ी चले जाएगी। तो इसलिए भाई साहब को बोला आप पुलिस को बोलो गाड़ी के पास रुकने के लिए। फिर भाई साहब ने बोला गाड़ी के पास दो पुलिस लोग आए थे तो एक गाड़ी के पास रुके थे, एक हमारा साथ एम्बुलेंस में आए थे, पुलिस आना एम्बुलेंस आना एक साथ हो गया। उसके बाद फिर एम्बुलेंस में सुला करके नजदीक हॉस्पिटल में लेके गए, मैं एम्बुलेंस में ऐसे सोया था। फिर भाई साहब हॉस्पिटल में डॉक्टर जाके लेके आया, लेके आकर के डॉक्टर आके देखा, देखो तो पूरा कपड़ा में सारा सफेद कपड़ा सारा लाल हो गया था, पूरा सामने पोर्शन पूरा लाल से भरा हुआ है, तो चेहरे में कौन बाल में कौन। तो डॉक्टर आके देखा, डॉक्टर सोचो कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, चलो अभी इसको फर्स्ट एड कर देते हैं। फिर पूछा क्या हुआ, फिर भाई साहब ने बोला किसी ने फायरिंग करके भाग गया, तो डॉक्टर भी नर्वस हो गया। उसके बाद डॉक्टर बोला अभी इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसको कहीं डैमेज हो सकता है इसलिए इसको स्कैनिंग करना पड़ेगा, आप एक काम करो वापस मेसाणा में जाओ, वहां से आधा घंटा वापस मेसाणा में जाने का जर्नी है। फिर पुलिस लोग भी आए तो वो बोलते अभी चलो चलो फटाफट चलो, अभी इमरजेंसी केस है, अभी यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी मेसाणा चलो। फिर हम मेसाणा में एम्बुलेंस में गए तो पीछे से पुलिस लोग आया आकर के पीएसए आकर मैं मेसाणा में हॉस्पिटल में सामने वो रोटरी हॉस्पिटल था सामने खड़ा कर दिया। पीछे से पुलिस पीएसए आकर बोलते है ये तो इमरजेंसी केस है, ये तो रोटरी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई स्कैनिंग सिस्टम नहीं है, सीधा अहमदाबाद ले चलो। फिर वहां से एक घंटा अहमदाबाद के लिए जर्नी। तो मैं क्या क्या निमित्त मात्र बॉडी में एंट्री हूँ लेकिन मेरा पूरा कॉन्शियस वतन में हूँ, मैं बाबा का गोद में, प्रकाशमणि दादी आए थे ना मैं उनको गोद में जाके ऐसे बैठ गया। जैसे प्रकाशमणि दादी हमेशा कोई मधुबन में छुट्टी लेके जाने विदेश में जाते ना दादी अपना गोद में सुला करके ड्राई फ्रूट खिलाती थी, मैंने वही अनुभव करते दादी गोद में सुला रहा हूँ, एम्बुलेंस हिल रहा है मैं दादी को गोद में हिल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग कर रहा था। तो अहमदाबाद मेसाणा से अहमदाबाद जाने के लिए एक घंटा की जर्नी है, तो अहमदाबाद वहां से मैसेज 2 बजे निकले, अहमदाबाद पहुंचे 3 बजे। मैंने कहा लगा इतना जल्दी अहमदाबाद हॉस्पिटल आ गया, तो एक घंटे मेरा 15 मिनट का ही अनुभव हुआ, मैं पूर्वतन में बैठा हूँ बाबा के पास गोद में, दादी को गोद में। तो मेरे को फुल एनर्जिक स्टेज था। तो फिर मैंने सामने देखा तो हॉस्पिटल के सामने गाड़ी खड़ी है, दो बहने ऑलरेडी भाई साहब ने फोन किया था लोटस हाउस से, तो दो बहने जाकर के हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेकर के सामने स्ट्रेचर वगैरह रखे थे, नर्स लोग सब खड़े थे। तो दरवाजे ओपन करते, एम्बुलेंस दरवाजा ओपन करते, हमने अंकल के देखो सामने दो बहने दिखाई दे रहा है। तो मैंने चला अभी हॉस्पिटल में आ गया, शरीर छोड़ना था, रास्ते में शरीर छोड़ना था, अभी तक शरीर नहीं छोड़ा है। तो अभी हॉस्पिटल में पहुंच गया तो डॉक्टर कैसे भी करके हमको बचाएंगे सोच करके मैंने डोर ओपन करते ही वही एनर्जी, वतन की एनर्जी से लुटाते जाके स्ट्रेचर में जाके सो गया। तो बहने देखे अंडर खा रहा है, तो इतना पूरा खून से भरा हुआ है, ये कैसे पैदल आ रहा है। तो उसके बाद फिर बाद में नर्स लोग दौड़ के आ गया, फिर सीधा धक्का मार के स्कैनिंग के लिए लेके गया। तब तक पूरा कपड़ा सारा खून भरा हुआ था। तो मैंने, मेरे को अंदर से जब खून जमा होता ना उसको मेरे को कब जमा हुआ ऐसे फीलिंग हो रहा था, मैं श्वास लेने के लिए दिक्कत हो रहा था, हल्का सा दर्द जैसे हो रहा था, मुझे ये पता नहीं यहाँ गोली फंसा हुआ है, लेकिन मेरे को यहाँ कुछ लग गया, लेकिन यहाँ कब जमा हुआ है, खून जमा हुआ है, इसको मैं निकालने बोल करके उसको नर्सस लोग मैंने बोला इसको निकालो पहले, मैं तो श्वास लेने के लिए दिक्कत हो रहा है। फिर नर्सस लोग आया आकर के वैक्यूम डाल करके इसको सारा निकाल दिया, निकालने के बाद कपड़ा फाड़ करके हॉस्पिटल कपड़ा पहना करके सीरस कैन के अंदर डाल दिया। कैन के अंदर डालते ही बाद में डॉक्टर को फोन करके बता दिया, डॉक्टर ने फिर बाद में सामने आके खड़ा हो गया, बाद में स्कैनिंग में 3 बजे डाल दिया, 4 बजे स्कैनिंग रिपोर्ट वापिस बाहर आ गया। आते सामने देखो तो डॉक्टर सामने खड़ा है, तो सामने खड़ा डॉक्टर रिपोर्ट जाके ऐसे देखा, देखने के बाद बोलते आपका गोली देखो यहाँ फंसा हुआ है। डॉक्टर बोलने के बाद मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूँ, इतना मोटर लग रहा है इधर, यहाँ फंसा हुआ है। तो फिर डॉक्टर बोला अभी इसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने से पहले हमको ब्लड का जरूरत है, ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, ब्लड कहाँ से देंगे। उसके बाद फिर भाई साहब अहमदाबाद आते जाते मधुबन फोन करके वो गाड़ी को दूसरा चाबी लाने के लिए बोला। वो भाई ने, दो भाई ने, तीन भाई ने मधुबन से चाबी लेके रात को 12 बजे निकले, अहमदाबाद सुबह 7 बजे हॉस्पिटल में पहुंच गया। फिर उनको पूछा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो दोनों बोला हमारा ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, मेरा भी ओ पॉजिटिव था। तो चलो अभी सो जाओ, आपको ब्लड निकलना जरूरत है, आपको इनको ब्लड देना है, जो जाओ आपको ब्लड निकल के इनको डालना है। तो बट वैसे करके बाद में 7 बजे से 11 बजे तक ऑपरेशन के पहले खून वगैरह डाल दिया, बाद में 11 बजे फाइनल कर दिया अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। तब तक कहीं भाई बहन सब हॉस्पिटल में आके खड़े थे बाहर, तो भाई साहब तो गारंटी नहीं था, विश्वास नहीं था, तो शरीर छोड़ दे बोल करके हमारा लौकिक में फोन करके जल्दी सबको भाइयों को बुला लिया था। वहां से इमरजेंसी बोल करके 4 भाई लोग वहां से आ गया था। तो 5 तारीख सुबह हॉस्पिटल में सामने आ गए, बाद में 11 बजे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर लेके गए। ले जाने के बाद फिर मुझे इतना पता लेके गए थे, बाद में कुछ पता नहीं, बाद में इंजेक्शन दिया दे तो मुझे कुछ पता नहीं, जैसे सो गया जैसा। बाद में बाहर भाई साहब सब लोग भाई बहने सब खड़े थे। फिर बाद में 1 बजे ऑपरेशन करके जस्ट ऑपरेशन थिएटर जैसे बाहर आ रहे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अभी नींद करके बाहर आ रहा हूँ, ऐसे फीलिंग हो रहा था। तो बाद में जैसे बाहर आया तो मेरे को आंख खोल के देखता हूँ लाइन में भाई बहने सब लाइन में सफेद वस्त्रदार सब चेहरा छोटा करके ऐसे खड़े थे, भाई साहब मुझे भाई भी बाहर खड़े थे। फिर मैंने उसको देखा तो चेहरा तो बहुत मुरझा हुआ है चेहरा, बस ऐसा लगता बहुत फीलिंग में टेंशन में। तो फिर मैंने लगा इसको कुछ कर दो बोल करके मैंने स्ट्रेचर में सोते सोते हाथ को ऐसे हिला दिया, तो ऐसे हाथ हिलाए तो उनके चेहरे में कुछ आ गया, चलो अभी ऑपरेशन सक्सेस हो गया, अभी भाई बच गया, अभी बाहर आ गया। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के बाद बाद में आईसीयू में भर्ती कर दिया, फिर वहां रेस्ट में किया। बाद में शाम को डॉक्टर पूरे टीम को लेकर करके मेरा सामने आके खड़ा हो गया। डॉक्टर बोलते हैं अभी आपको यहाँ भी फ्रैक्चर है, यहाँ भी फ्रैक्चर है, दोनों डॉक्टर मिलकर किया था। तो उन्होंने बोला अभी इसको भी फ्रैक्चर किया हुआ, इधर अभी स्टिच किया हुआ है, अभी इसको आपको बात भी नहीं करना और भोजन भी नहीं करना, आपको केवल लिक्विड में रहना है, ऐसे बोला। मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, लिक्विड में क्या फर्क पड़ेगा, 1-2 दिन क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे सोच करके ओके बोला। फिर ऐसे बोल करके डॉक्टर पूरा टीम को लेके मेरा दांत को मिला के बंद कर दिया, पूरा ऐसे टोटली बंद कर दिया। बंद करने के बाद डॉक्टर बोला अभी आपको मुंह हिलाना नहीं, भोजन भी नहीं करना। मैं सोचा 1-2 दिन क्या फर्क पड़ेगा। फिर भी मैंने पूछा इस सारे से कितना दिन ऐसे रहना है, डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा दिन 1.5 महीना बोलते हैं। तो 1.5 महीना मुंह बंद ऐसे पूरा ऐसे बंद हो गया। तो आपको जूस पीना है तो भी कैसे पीना है मैंने पूछा, मतलब डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं आपको ओट ओपन रहेगा, सिर्फ दांत बंद रहेगा, आपको कटोरे में या स्ट्रॉ में आप जूस या दूध जो भी पी सकते हैं। फिर उसके बाद टैबलेट दे रहे थे मेरे को हीलिंग के लिए, तो टैबलेट तो जूस तो है नहीं, मैंने पूछा नर्सेस लोग दे तो टैबलेट कैसे खाएंगे, नर्सेस लोग बोला इसको कूट के पोड करके जूस में नहीं तो दूध में डाल के देंगे आपको, स्ट्रॉ में नहीं तो कटोरे में पी सकते हैं। चलो ठीक है पियेंगे कोई बात नहीं ठीक है। उसके बाद जब वो मेरे सो पीने के लिए दे रहे थे तो कितना भी मीठा जूस हो उसमें टैबलेट क्रश करके डालने से कैसे टेस्ट होगा, आप सोचिएगा उसका स्मेल कैसे होगा। तो अभी मेरे को दे रहे थे तो फिर मैंने पीना था, ये पियेंगे तो मेरा अच्छे के लिए बोल रहा ना, तो मेरे को पीना ही है तो फिर उसको नहीं पियेंगे तो हीलिंग नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, हाथ में ग्लास लेकर के फिर वापस वतन में जाकर के बाबा के पास जाकर के बाबा मेरे को सुबिरस पिला रहा है, सुबिरस पिला रहे, वो स्मृति से मैंने ऐसे पी करके फिर बाद में धीरे से बॉडी में एंट्री होता था। तो ऐसे में दिन में 3 टाइम करता तो मेरे इसलिए मुझे पता है मुझे पुरुषार्थ करना है मुख से गले तक उतारने के लिए, उसके बाद तो अपने आप वो तो हीलिंग हो गई। तो इसलिए मेरे को दिन में 3 टाइम ऐसे 15 दिन का टैबलेट्स था, दिन में मैं ऐसे 3 बार ऐसे अनुभव करके वतन में जा करके बाप के पास बैठ करके पी के फिर बाद में नीचे उतर जाता। ऐसे 4 दिन आईसीयू में था, 4 दिन के बाद फिर वार्ड में आ गए, वार्ड दिन के बाद 8 दिन तक धीरे धीरे हीलिंग होता गया। फिर वापस 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 12 तारीख डिस्चार्ज हुआ, फिर वहां से डिस्चार्ज करके सीधा मधुबन में ट्रोमा हॉस्पिटल में भर्ती किया था रेस्ट के लिए। उसके बाद मैं आके 12 तारीख आया और 15 तारीख वापिस बाबा आ गए डायमंड हॉल में। तो उसमें 20,000 का गैदरिंग था, उस समय मेरे को बाबा से मिलने के लिए व्हील चेयर में लेके आए थे। तो फिर मैंने बाबा से सामने गया, बाबा मुझे ऐसे दृष्टि दिया, दृष्टि देकर के बोलते है बाबा बच गया ना। बाबा को कैसे पता चला ये सारा इंसिडेंट, तो मैंने रोड में जो वतन में गए थे ना सारा जो अनुभव किया, दादी के पास इमर्ज किया, बाबा मेरे सिर के ऊपर बैठे थे, ये सब साक्षी होकर के बाबा देख रहे थे। फिर बाबा वतन से साकार में आया डायमंड हॉल में, फिर डायमंड हॉल में बाबा के सामने जाते मेरे को बाबा बोल रहे बच गए ना। वो इमेज है मेरे पास, 4 इमेज है, वो आपके व्हाट्सएप इसमें दिखाएंगे अभी। एक ऑपरेशन वाला है और डिस्चार्ज वाला है और यहाँ ट्रोमा में जो मैंने पूरा बाल में 8 दिन स्नान नहीं किया था, बाल में सारा खून था, फिर वो खून सारा निकाल करके फिर बाद में बाबा से मिलने के लिए बाल निकाल के बाबा के मिलने के लिए गए थे। उसके बाद मधुबन में मैं 1.5 महीने के ओपन करने के बाद मधुबन गया रेस्ट के लिए। फिर मधुबन में मेरे को मैं अनुभव सुनाने के लिए बोला हिस्ट्री हॉल में, फिर मैंने अनुभव सुनाया। सुनने के बाद आंगन में सचिवेन शील बहन आंगन में बैठे थे, वो लोग बोला अभी सचमुच आपको पुनर्जन्म ही हो गया तो इसलिए आपको बर्थडे मनाना पड़ेगा। तो फिर बर्थडे का डेट भी फिक्स कर दिया 26 अप्रैल, वो भी इमेज है आपको दिखाएंगे अभी। मुझे एक्चुअली पूरा हिस्ट्री स्टार्टिंग से एंड तक 1 घंटा का हिस्ट्री है, लेकिन भाई जी ने मेरे को सिर्फ 10 मिनट के लिए टाइम दिया। 1 घंटा का मैं कैसे 10 मिनट में बताऊं, इसलिए मेरा पूरा काट काट करके मैंने बता दिया। तो स्टार्टिंग से एंड तक बताने के लिए मेरे को पूरे 1 घंटा, तभी आपको समझ में आ गया इंस्टेंट कैसे होते हैं क्या है, तो आपके बाद में समझ में आ गई। तो इसलिए देखिए इधर ना ये ऑपरेशन का है, ये ना ये कहने के पास जो गोली लगी है, ये ऑपरेशन के पहले क्या है, और ये जो ना गोली जो लेफ्ट साइड आया था ना वो ना नहीं, वो तो जो लेफ्ट साइड में जो है ना, ये बर्थडे लास्ट में बर्थडे मनाया था मधुबन में, ये तो सिल्वर जुबली मेरा 25 साल को हुआ था मधुबन में, उसी साल हुआ था 2015 में। ये बाबा से मिलने के लिए डायमंड हॉल में, ये बाबा मेरे को टोली देख करके बच गए ना ऐसे बाबा ने तो पूछा था 2015 मार्च का है। ओम शांति,
ओम शांति। तो हम कहें एक बार वाह बाबा वाह, और वाह बाबा के बच्चे वाह, है ना। सुरेश भाई ने तो बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया, ऐसे हम सब भाई बहनों का भी अंदर पुरुषार्थ चलता है और अनुभव बहुत होते हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने पूरे ही अपने एक्सपीरियंस में बाबा को और निमित हमारी दादियां जो हैं उनका प्यार अपने साथ रखा, तो बाबा ने भी कैसे अपने बच्चे को संभाला। तो थैंक यू बाबा, बोलिए एक बार थैंक यू बाबा, और थैंक यू हम बाबा के बच्चे, है ना। तो अभी हम इसको और आगे लेते हैं, और अंबिका दीदी जी हमारे बीच में हैं, श्रीकांत भाई भी हम सभी के बीच में हैं। तो अभी हम प्रेजेंटेशन जो प्रोजेक्ट्स दिए गए थे 4 प्रोजेक्ट्स, तो उन प्रोजेक्ट्स में क्या किया, पैरेलल सेशंस में क्या हुआ, उनके जो कोऑर्डिनेटर्स थे, तो सबसे पहले मैं तनुजा दीदी हैं उनको बुलाना चाहूंगी, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर स्पार्क महाराष्ट्र, जो आपको बैंड मिले और तिलक मिला और इतना सुंदर हमको सोमान वाली एक्सरसाइज हुई सबने करी, कल भी करी परसों भी करी, तो उन सबका श्रेय तनुजा दीदी को जाता है, उनकी क्रिएटिव माइंड से और बाबा की प्रेरणाओं से वो ये सब करते हैं। तो दीदी आप स्टेज पे आए और जो प्रेजेंटेशन आपकी थी उसमें अभी आपने क्या प्रपोजल तैयार किया या क्या रहा, उसको 2 या 3 मिनट में आप हम सबके बीच में बताएं।
ओम शांति। इस साल का प्रोजेक्ट नंबर 1 जिसका टाइटल था आज का पल बने यादगार कल या वर्तमान पल बने यादगार कल, तो इसका जो उद्देश्य था जैसे बताया था बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। इसकी जो 4 सब टॉपिक्स थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 3-3 महीना एक एक टॉपिक को हम चलाएंगे। तो पहला टॉपिक सब टॉपिक जो था यादगार से वर्तमान, वर्तमान को यादगार, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा आज का हर पल वर्तमान जो है वो यादगार कैसे बने। तो एक हमने कीवर्ड रखा है पूरे साल भर के लिए कि हम हर कार्य के पहले वाह शब्द कहेंगे और कार्य पूरा होने के बाद भी वाह शब्द यूज करेंगे। तो जिसके आधार से हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी है या कुछ थकान है या कुछ भी ऐसा है तो वो समाप्त हो जाए। पहले पहले तो शब्दों को यूज करते करते फिर वो स्वरूप बन जाएंगे। तो कुछ भी छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, फैन को ऑन कर रहे हैं, नल ऑन कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, कुछ भी जो भी छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं रेगुलर, तो पहले वाह शब्द यूज करना है। तो वाह हो जाएगा वर्तमान, फिर भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं कि संबंधों में मधुरता कैसे आए। इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, महिमा करनी है, चाहे कुछ भी छोटा मोटा हो। कि आपका अगर कुछ नए हैं, कुछ दिखाई नहीं दिया उनके गुण, तो भी आपका ड्रेस बहुत अच्छा है या आपका फेस बहुत हर्षित मुख है या आपकी आंखें रूहानी है, ऐसा जो हमको फिजिकल दिखता है उसके लिए हम वर्णन करके उनको अप्रिशिएट करेंगे। या सेकंड करके आप बहुत अच्छे हो, तो संबंध हमारे मधुर बनते जाएंगे। और जिनसे हमारे संबंध कड़वे हैं तो उनके लिए मन में भी एक वाइब्रेशन रखेंगे, एक विचार कि हमारे संबंध अच्छे कैसे बने, इसलिए पहले उसके गुणों का ही अंदर वर्णन करना है। कोई ना कोई एक बात से हमारा संबंध बिगड़ गया लेकिन बाकी जो अच्छी बातें हैं उनमें उसका हम बार बार मन में वर्णन करेंगे और उनको बोलेंगे भी, चाहे फोन करके बोलेंगे चाहे लिख करके बोलेंगे, सामने नहीं बोल सकते हैं लेकिन इस टाइप से उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसे कई पॉइंट्स निकले हैं कि क्षमा करना या क्षमा मांगना या लेट गो करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अपने अंदर में कुछ पॉइंट्स को हमें सोमान में या स्वरूप में लाना है जिससे हमारे संबंध अच्छे बने। या जो सामने वाली आत्मा है उसको देवता स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप की नजर से देखना है या उनके गुणों को अपने बुद्धि में रखते हुए उनको देखना है। फिर जो दूसरा टॉपिक था हमारा सब टॉपिक जरा हटके जरा बचके, तो कुछ ऐसा नया करे जो रूटीन में है ऐसा नहीं, माना जो हम रोज सुनते हैं वैसा नहीं, लेकिन कुछ नया ताकि मन को उसमें बिजी रखे और वर्तमान को हम खुशी से बिताए। तो कुछ पॉइंट्स निकली है कि कुछ भी नई नई चीजें सीखनी है, किसी को रंगोली नहीं आता है तो रंगोली निकालना, या भोजन के व्यंजन कुछ नए सीखना छोटे छोटे हो ऐसे, या गीत गाना, कहानी सुनना सुनाना या मनन चिंतन करना जो हमने नहीं किया है, भले बाकी सब करते लेकिन मेरे लिए वो नया है, ऐसा कुछ नया करना है, भाषण तैयार करना या भाषण बोलना। कोई नहीं है तो अकेले एक रूम में जाके बाबा का परिचय या कोई टॉपिक पे भाषण बोलना, कोई विशेष स्थान पर जाकर योग की अनुभूति करना, सेवा के नए नए प्रयोग करना, या अकेले में आप डांस भी कर सकते हैं, कुछ नए नए स्टेप सीख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में सब काम आएगा है ना, 16 कला में, और कुछ तो काम नहीं वहां पे। तो ऐसा कुछ नया सीखना है जिसमें हम खुश रहे, हमारा वर्तमान खुशी से बीते। चित्र निकालना, कई है जो कभी भी पेंसिल हाथ में लेते नहीं और कोई पिक्चर निकालते नहीं ऐसे, या गीत गाना, या अचानक के समय बाबा की याद का अनुभव, जैसे अभी भाई जी से हम सुन रहे थे, तो ऐसे हमको अपने आप पर प्रयोग करना है, अपनी परीक्षा लेनी है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति मेरे ऊपर आ जाए तो मैं उस समय क्या कर सकती हूँ या क्या क्या करूंगी, उसको सोचना और अनुभव करके उसको लिखना। तो अपनी ऐसी परीक्षा लेनी है, एवर रेडी बनने के लिए अपने टेस्ट पेपर है, या खेलकूद करना, या पानी चार्ज करके प्रयोग करना, कभी 3 दिन 2 दिन ऐसा मौन का या भट्टी का कोई प्लान बनाना। तो इस प्रकार से कई बातें इसमें हमने फाइनल की है, जिसमें हम 3-3 मास एक एक टॉपिक पर, सब टॉपिक पर सभी पढ़ाई करेंगे और उसको फिर नोट डाउन करेंगे। ओम शांति।
इस प्रोजेक्ट में जो भाई बहन है वो हाथ उठाएंगे, तो आप सबको ये निवेदन है, हम जैसे पहले कहा था कि जो आप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे जो भी आपको रिपोर्ट मिले, चाहे चार्ट या, तो उनसे आप कुछ नवीनता ऐड करें। तो ये सिर्फ एक मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आप सबको ये निवेदन है कि आप रिसर्चर हैं, तो इसलिए आपको नवीनता सोच के इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाना, सबकी कंट्रीब्यूशन चाहिए इसमें।
थैंक यू तनुजा दीदी का थैंक्स, और श्रीकांत भाई ने भी बहुत अच्छे से उसको आगे क्लियर किया। तो अभी हम आगे चलते हैं और दिल्ली का जो एक प्रोजेक्ट है सुदर्शन चक्रधारी सो विश्व राज्य अधिकारी, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट रहा। और परसों भी हम लोग ने जब पैरल सेशन कल किया और परसों किया, तो उसमें काफी अच्छी चीजें निकाली हैं। तो अविनाश भाई हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी, वो आए और 2-2, 3-3 मिनट में ही अगर हमें बताएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे और भी प्रोग्राम होना है।
ओम शांति। प्यारे बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर सा मंत्र कहें या चक्र कहें, सुदर्शन चक्र दिया है। भगवान का तरीका बहुत सहज और सिंपल है। बाबा ने कहा है कि सुदर्शन चक्र फिराओ और बाकी सब चीजों से ऊपर अपने आप ही उठ जाएंगे। एक एक चीज से, एक एक संस्कार से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सुदर्शन चक्र फिराते हैं। तो इसी को मध्य रखते हुए इस प्रोजेक्ट का जो हमने एम रखा है वो स्वराज्य अधिकारी बनना, माया के चक्रों से अपने आप को हटाना, व्यर्थ और नेगेटिव विचारों से अपने आप को दूर करना, ये सारी चीजें सुदर्शन चक्र फिराने से ही आ जाती हैं। और जैसे हमने और भी प्रोजेक्ट्स देखे, फॉलो फादर अगर हम कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा का संस्कार भी सुदर्शन चक्र फिराने का ही था, परिवर्तन शक्ति भी हमको इसी से मिलती है। तो कुल मिलाकर के एक चक्र ही अगर हम फिराते रहें तो सारी चीजें हम स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके जो टूल्स रहेंगे वो साकार और अव्यक्त मूल्यां दोनों रहेंगी, चार्ट भी रहेंगे, और हमने ये सोचा है कि वर्कशॉप्स और भट्टियां बीच बीच में हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ताकि एक एक स्वरूप पे हम गहन अध्ययन कर सकें। हर एक स्वरूप के हमने 7-7 संस्कार निकाले हैं और एक एक संस्कार को हम एक एक हफ्ता लेकर के उसकी गहराई में जाएंगे। हमने जो मेथोडोलॉजी अपनाई है वो 5 स्टेप्स में अपनाई है, एक एक संस्कार की अवेयरनेस, उसकी एस्पिरेशंस, थर्ड नंबर इज अफर्मेशंस, फोर्थ नंबर इज एप्लीकेशन एंड फिफ्थ नंबर इज अटेंशन। एक एक संस्कार को हम इस विधि से अपने अंदर लेकर के आएंगे। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 24 फरवरी से स्टार्ट होगा और 10 जनवरी तक चलेगा। टोटल 45 वीक्स में हम सभी 5 स्वरूपों का गहन अध्ययन करके उसको अपने जीवन में ला करके उसका स्वरूप हम बनेंगे। इसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो है हमारी रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना, किसी भी समस्या या किसी भी सिचुएशन में फुल स्टॉप तुरंत लगाना, हमारी योग की क्वालिटी और ड्यूरेशन को बढ़ाना, प्रेजेंट में रहना, निर्विकारी बनना, बेहद के वैराग्य वृत्ति और एकांत पे रहना और खुशी बढ़ना। हरेक का 7-7 जो हमने संस्कार निकाले हैं वो यूनिक हैं एक एक स्वरूप के। साथ ही साथ हमने जो चार्ट बनाया है उसमें हमने फोकस रखा है कि अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल और नुमा शाम योग हमारा प्रॉपर रहे और साथ साथ हम इसको व्यवहारिक जीवन में एप्लीकेशन में भी ला सकें। तो हमारा फोकस पूरा जो हर एक स्वरूप के संस्कार हैं उनको अपने जीवन में लाते हुए चक्र फिराना, ऐसा हमारा फोकस रहेगा। इसके लिए हमने आज हमारी अभी क्या स्थिति है उसके लिए एक क्वेश्चनेयर भी प्रिपेयर किया है जो सभी भाई बहनों ने भरा है और उसका हम असेसमेंट करेंगे। और उसके बाद ये भी लक्ष्य रखा गया है कि मिड ईयर रिव्यू जुलाई के अंदर, जुलाई एंड में उसमें किया जाएगा और एक फाइनल असेसमेंट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कि हमारे को इस प्रोजेक्ट से क्या लाभ हुआ, क्या हमारी स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुई, उसको भी चेक किया जाएगा, ऐसा हमने प्लान किया है। ओम शांति।
इस ग्रुप में कितने भाई बहन हैं, हाथ उठाएंगे? थैंक यू। इस ग्रुप की जो मना प्रोजेक्ट की विशेषता है कि लोग असेसमेंट करके पुरुषार्थ की प्लानिंग करेंगे।
अविनाश भाई दीदी को प्रेजेंट कर रहे हैं और दीदी जितने भी भाई बहने हैं इस प्रोजेक्ट में सबने कल अपना जो प्री टेस्ट होता है वो भर दिया और इसके बाद ORC में मतलब आप सबको भी ये निमंत्रण है क्योंकि आज आशा दीदी आए थे और कह के भी गए के 22nd of July टू 26th of July 2020 में जैसे यहाँ पर एनुअल मीटिंग हुई है, पिछली बार भी बहुत लोग आए थे ORC, तो आप सब भाई बहनों को फिर से निमंत्रण है वहाँ पर आप आएंगे। तो जब वहाँ आएंगे और ये प्रोजेक्ट भी हमने जो लिया हुआ है दिल्ली का तो उसमें भी हम उनको एक बार जैसा अविनाश भाई ने बताया तब भी मिलकर हम उनसे 6 months या 5 months में उनका एक बार फॉलो अप एवरी मंथ चलेगा लेकिन एक कलेक्टिवली हम 6 महीने में उनको रिव्यू भी करेंगे। तो क्योंकि ज्यादा फॉलो अप रहता है तो अच्छे से एक स्मृति में भी बातें रहती हैं। तो इस तरह से दीदी को प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है, सारा सब कुछ बन चुका है। तो अभी आगे चलते हैं और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट 3 हमारे बीच में है, जिसको कुणाल भाई हैं बैंगलोर से, वो इस प्रोजेक्ट को बताने आएंगे। तो मैं कुणाल भाई के लिए भी एक बार हम ताली बजाएंगे। और बहुत अच्छे से ब्रदर इतने डेडिकेटेड होके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा। थैंक यू कुणाल भाई।
ओम शांति। सभी को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, उमंग आ रहा है ना? ठीक है। अभी तो थर्ड प्रोजेक्ट है, परिवर्तन शक्ति के प्रयोग से निरंतर प्रगति। ये अंबिका दीदी के अंडर ये प्रोजेक्ट होगा और इसके गाइड रहेंगे या कोऑर्डिनेटर, इसके गाइड अंबिका दीदी रहेंगे और कोऑर्डिनेटर छाया बहन रहेंगे। इस प्रोजेक्ट में मेन हम कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट्सएप एंड जीमेल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। प्रोजेक्ट में कुछ साधन जो यूज किए जाएंगे वो है दादियों और वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस, अंबिका दीदी जी के क्लासेस, पॉइंट्स और प्रश्नोत्तरी, और जो सब लोग देखे लास्ट टाइम जो पावर ऑफ धारणा में हुआ है वो सब रहेगा। उसका कुछ डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। उससे पहले टॉपिक्स जो लिए गए हैं, 11 महीने के लिए 11 टॉपिक्स लिए गए हैं जिनमें परिवर्तन पे फोकस होगा। फर्स्ट टॉपिक है ज्ञान, सेकेंड है योग, थर्ड है दिनचर्या में परिवर्तन, फोर्थ है संकल्पों में परिवर्तन, फिफ्थ वाणी में परिवर्तन, सिक्स्थ कर्मों में परिवर्तन, सेवेंथ पवित्रता, एथ संबंध संपर्क, नाइन्थ स्वभाव संस्कार, टेंथ हमारी स्थिति में परिवर्तन, और इलेवेंथ जो टॉपिक रहेगा हमारी भावनाओं में परिवर्तन। तो इन सब को लेके इन सब में परिवर्तन का इवैल्यूएशन भी लिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट में जो नया हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है पुरुषार्थ करना तो ठीक है, पर हम पुरुषार्थ को एंजॉय कैसे करें? देखिए बाबा बोलते हैं ना, मोहब्बत में मेहनत समाप्त हो जाती है। ऐसे जब हम पुरुषार्थ को एंजॉय करेंगे तो पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ जो क्रिएटिव चीजें करने का सोचा है वो हम करेंगे। फर्स्ट थिंग, हर महीने एक वेबिनार या स्काइप कॉल रखेंगे जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड दीदी जी का क्लास रहेगा और भाई बहनों का कम्युनिकेशन या उनको कोई गैप लगता है, कुछ फिल करना है, कुछ नया चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन भी स्काइप कॉल या वेबिनार के थ्रू हम लोग करेंगे। सेकेंड चीज है, वीकली पुरुषार्थ में कुछ क्लिप्स भेजे जाएंगे जिसमें हम लोग एक अव्यक्त मुरली रहेगा, उस अव्यक्त मुरली पर अंबिका दीदी का गाइडेंस और वो परिवर्तन शक्ति में कैसे हमको हेल्प करे उसका 5 या 10 मिनट का क्लिप रहेगा जो हमको हमारा वीकली पुरुषार्थ डिसाइड करेगा। थर्ड है इवेल्यूएशन ऑफ चेंज, भाई बहनों में जो चेंज आ रहा है उसका इवेल्यूएशन और फीडबैक, इस चीज पर हम ज्यादा फोकस करेंगे पिछली बार से, क्योंकि चेंज के अकॉर्डिंग ही हमको पता चलेगा किसमें परिवर्तन है, उस अकॉर्डिंग ही जिसमें बहुत ज्यादा चेंज आया है, जिसने कई नए नए तरीकों से चेंज किया है, तो उसको बोलेंगे क्रिएटिव स्टूडेंट ऑफ द मंथ और ऐसे ही क्रिएटिव स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो कुछ पॉइंट जिस पर हमारा डिस्कशन हुआ था, चेंज के लिए क्या चाहिए? पहले चाहिए रियलाइजेशन। तो जब तक महसूसता नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट फोकस ऑन महसूसता, रियलाइजेशन, देन चेंज। फिर दीदी जी ने जैसे क्लास में बताया कि हमारा चेंज क्यों नहीं होता है, हमको ज्ञान है, सब कुछ है, चेंज क्यों नहीं होता है? माना हमने ज्ञान को बस जाना है, तो जानना, मानना और समा लेना, तो ज्ञान है माना वो हमारे अंदर आ जाए, वो चेंज हमारे अंदर हो जाए। और थर्ड पॉइंट जो मेन था कि सर्व धारणाएं हमारे अंदर कैसे आती है, जितना हम वो पॉइंट वो लाइट की स्मृति में रहेंगे, जितना वो स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमारे अंदर सर्व धारणाएं आती जाएंगी। तो एक पैरामीटर हम रखेंगे चेकिंग के लिए आपका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है या नहीं, उसके लिए पैरामीटर है आप अभ्यास कीजिए वो पॉइंट अपने ज्योति स्वरूप को कितना समय हम देख सकते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, उसको बढ़ाते बढ़ाते कितना सेकेंड कितने मिनटों तक हम देख सकते हैं, तो ऐसे ही बाबा के ज्योति स्वरूप को हम कितना समय देख सकते हैं, तो ये एक पैरामीटर रहेगा। इसके बाद जो हम वेज ऑफ पुरुषार्थ है, जो थीम रहेगी पुरुषार्थ की वो बताएंगे, अमृत वाला प्रैक्टिस पॉइंट रहेगा। उसके बाद साकार मुरली में दो चीजें रहेंगी, एक साकार मुरली का अभ्यास, कोई भी एक अभ्यास रहेगा, और उसके बाद साकार मुरली पे एक पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन रहेगा, वो एक जैसे आपको दिखाए थे पिक्चर के रीति वैसे कोई क्रिएटिव पिक्चर्स बनाकर हम उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि वो रिमेम्बरेंस आपका बहुत इजी रहे। हमको मुरली पॉइंट याद नहीं आता है ना, पर वो फोटो देख के वो उस चित्र में बैठ जाएगा, तो फोटो देख के हमको स्मृति आ जाएगी वो पॉइंट की। उसके बाद अव्यक्त मुरली पॉइंट रहेगा, हर संडे एक अव्यक्त मुरली रहेगा और दीदी जी का उसमें छोटा सा क्लिप रहेगा। मंथली इवेल्युएशन और फीडबैक और मंथली कुछ क्लासेस रहेंगे जिसपे हम फोकस करेंगे। जो क्रिएटिविटी रहेगी वो क्रिएटिव पिक्चर्स और कुछ वीडियोस भी बनाने का सोचा है, और कुछ एक्टिविटीज पिक्चर्स है और वीडियोस को रेट करके कुछ एक्टिविटी बनाया जाए जिससे जो लोकल चैप्टर्स रहते हैं या पुरुषार्थ के ग्रुप में जो सेंटर्स में पुरुषार्थ करते हैं, तो क्रिएटिविटी से भाई बहनों को भी अट्रैक्ट करके एक संगठित रूप में एक्टिविटीज के थ्रू अच्छा पुरुषार्थ कर सके। सो इसमें एक चार पॉइंट थी कि हाउ टू चेंज। एक ज्ञान के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, कोई हम दृढ़ संकल्प करें उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तीसरा योग अग्नि, जैसे अग्नि में जाते तो परिवर्तन हो जाता है ना, ऐसे योग अग्नि के थ्रू हम परिवर्तन करें। और चौथा है साइलेंस पावर। तो और साइलेंस पावर से याद आया कि दीदी जी ने एक स्पेशल चीज करा, इस ग्रुप के सभी भाई बहनों की भट्टी रखी जाएगी, ताली तो बजाइए, इस ग्रुप के सभी भाई बहनों की भट्टी रखी जाएगी स्पेशल परिवर्तन के लिए। और कुछ और कलेक्टिव चीजें, हम जैसे हम पुरुषार्थ तो सब जगह करते हैं, पर हम कलेक्टिव पुरुषार्थ करें, कलेक्टिव भट्टी करें एक ही समय पर, कलेक्टिव सब भाई बहने मौन रखे, तो उसके लिए भी प्लानिंग चल रहा है कि हम सब लोग एक ही दिन महीने में समझो मौन रखते, तो सब भाई बहने उसी समय पर मौन रखे और उसका रिजल्ट देखे। और प्रयोग पर भी फोकस किया जाएगा, शरीर के ऊपर या दूसरी भी चीजों पर राज्यों के प्रयोग किए जाए और उनका एक्सपीरियंस कलेक्शन जो हमको इस बार फोकस करना है, कि एक्सपीरियंस बहुत भाई बहनों के होते हैं तो हमारे पास आ नहीं पाते, तो इस बार हम लोग फोकस करेंगे सबके एक्सपीरियंस का एक रिकॉर्ड रखे और उसका एक बुक बनाया जाए। और प्रोजेक्ट में जो कंटेंट हुआ है, जो क्रिएटिविटी हुआ है, उसका हर मंथ हम या पूरा ईयरली बेसिस पे एक बुक जरूर बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट का प्रोसीजर है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स अंबिका देवी जी को, बाबा को, और सब उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा, सबके पुरुषार्थ में बहुत अच्छी उन्नति हो और सब बाप समान बन जाए। अच्छा, हम
इस प्रोजेक्ट में कितने भाई बहन हाथ उठाएंगे? गुड।
थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा डिटेल में आपने बताया प्रोजेक्ट के बारे में। और परिवर्तन तो है ही अपने आप में कि पूरा लाइफ ही क्या है, थोड़ा 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 हम परिवर्तन करते ही जाएं। तो अभी आगे लास्ट प्रोजेक्ट है, उसके लिए विनय भाई को मैं बुलाती हूँ, फॉलो फादर वाला। लेकिन समय को देखते हुए आप पूरा डिटेल में ना बताएं अभी, सिर्फ उसका जस्ट बताना है कि हमने क्या दिया और क्या हम आगे उसको करने वाले हैं, बस। तो विनय भाई के लिए एक बार ताली बजा दें। और ब्रदर एक प्रोजेक्ट नहीं, सभी प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग करते हैं, पूरा ही ट्रांसलेशन हो, कुछ इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे हम अटकते हैं, तो विनय भाई बहुत अच्छे से गाइड करके हमको आगे लेकर जाते हैं।
ओम शांति। आदरणीय दीदी जी, श्रीकांत भाई, शुभेन, फॉलो फादर इस प्रोजेक्ट का टाइटल है। इसे राजयोग लेबोरेटरी SIG है, स्पार्क में स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, उसके अंतर्गत लिया है। उसके पीछे जो प्रेरणा है वो है स्वयं सशक्त बनना और औरों को सशक्त बनाना, जिससे अंतिम समय की परिस्थितियों में हम उसका हम सामना कर सके। चार सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर होना, पिछले सालों में ये प्रोजेक्ट था, और बाबा की लंबे काल की जो आश है हम बच्चों से, वो पूरा करना। इसके लिए हमने एक ईमेल एड्रेस बनाया है, आपको भी अगर इसमें कहीं से कुछ गाइडेंस चाहिए तो इस ईमेल एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं, followfather2020@gmail.com। मार्च से जनवरी 21 तक रहेगा। इसमें जो साधन बताए गए हैं वो तो सभी हैं ही, लेकिन सूर्य भाई जी ने जो क्लास 9 तारीख को हम सबके बीच लिया था, उसको हमने विशेष एडिशन किया है कि उसके आधार पे भाई जी ने चार सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी अंतिम समय में ये सब कैसे काम लगेंगे और फॉलो फादर करने में कैसे मदद रूप होंगे ये बात आएंगे। पिछले साल भी जिस तरीके से पॉइंट्स भेजते थे, ऑडियो क्लिप्स भेजते थे, वही इस समय भी हम करेंगे। और नोट के रूप में हमने रखा है कि मोस्ट रेगुलर, जैसे इस साल भी किया था, जो मोस्ट रेगुलर होंगे चार्ट में और पुरुषार्थ में उनको अवार्ड दिया जाएगा। कल वो फंक्शन भी हुआ। क्वेश्चनेयर जो बनाएंगे अभी उसको फॉलो फादर के पैरामीटर्स में, अभी मैं बाप से कितना दूर हूं या कितना अलग हूं, मेरा रास्ता आशा दीदी के सेंस में कहें तो कितना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, वो सीधा कैसे बनाऊं, उसकी बात होगी। और उसको चेकिंग करेंगे फर्स्ट और लास्ट ऐसा होगा। और हमारे लिए हमने कैचवर्ड जो रखा है वो है, अगर बाबा इस परिस्थिति में होते तो। मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं सोच रहा हूं बाबा होते तो क्या करते, तो ये मेरे सामने एक टारगेट रखा है कि भाई वो बाबा होते तो, जैसे उत्तर दिशा देखने के लिए कंपास का उपयोग करते हैं, मैग्नेट का उपयोग करते हैं, ऐसे हमारे लिए कंपास ये बाबा होते तो होता। बस इससे विशेष कुछ ज्यादा। और ये जो बात है ये दीदी को मैं सबमिट करता हूँ, और फिर जैसे जैसे चार्ट बनेगा और क्वेश्चनेयर बनेगा वो भी आप सबको भी उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट एक दूसरे का पूरक है। यादगार पल बनाना माने क्या? ब्राह्मण जीवन सफल करना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना माने क्या? ताकि बाबा जो हमारे पास चाहता है कि हम भविष्य के प्रति आशावान रहें और भूतकाल को गौरव अनुभव करें। तो इस तरीके से तो परस्पर एक दूसरे से हम अगर अवेयर रहते हैं तो दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरे प्रोजेक्ट को, मेरा प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को एम्पावर कर रहा है। ओम शांति।
थैंक यू विनय भाई, बहुत अच्छा आपने बताया और आप दीदी को दे भी रहे हैं। और हमारे जो भाई बहने बैठे हैं मैं देख रही हूँ बहुत प्यार से सुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो एक बार ना सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पे, एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं। अब पता चलेगा कि सच में सुना है या नहीं। चार प्रोजेक्ट तो बताए बहुत अच्छे, और मैं देख रही हूँ हर एक को कि पता नहीं वो कितना समझ में आ रहा है। तो एक मिनट भैया म्यूजिक चला दें, ठीक है? अब ऊपर ताली बजा ले, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले जैसे आपको अच्छा लगे। ताली बिल्कुल इसके तरीके से बजाना जैसा म्यूजिक बज रहा है ना वैसा। भैया थोड़ा म्यूजिक तेज करना। वेरी गुड। बालकनी वाले भी बजाएं एक बार। अब एक दूसरे को देख के हाथ मिलाएं, जो प्रोजेक्ट पसंद आया वो बता दें। हाँ बात करें, हाँ लेफ्ट राइट दोनों तरफ, मेरे को नहीं देखना है, भाई बहनों को देखो, जगाओ थोड़ा सबको। अब एक बार भैया म्यूजिक थोड़ा सा तेज करें। हाँ अब ऊपर ताली, सामने लेफ्ट, उनके कान में नहीं बजाना है। दोनों हाथ खोलें अपने। हाँ थोड़ा सा हाथ की एक्सरसाइज कर लें, ठीक है? अपने आप को शाबाशी दे दें, दे दे दोनों हाथ से दे दें, शाबाश, वाह बाबा का बच्चा वाह, है ना, इतना सुन रहा है इतने चार दिन से। हाँ वाह, बैठ जाइए। आपके बीच में रखे तो लगा कि थोड़ा सा हम इस चीज को और अच्छे से गहराई से समझे। तो अभी मैं संजय भाई, जो हमारे ज्ञान सरोवर में बहुत लंबे समय से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्पार्क में भी अपनी सेवाएं देते हैं, आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के, आप हमें बताने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन किस तरह से होता है और कैसे हम, क्योंकि जितना अच्छा हमारा ये दोनों चीजें होती है एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन, उतना अच्छा हम एक प्रोजेक्ट नहीं, एक चीज नहीं, अपने आप को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो संजय भाई का भी बहुत तहे दिल से हम आज, क्योंकि थैंक्स गिविंग डे है, हम थैंक्स करते हैं कि आपके सहयोग से भी ये पूरी जो मीटिंग आज सफल हो रही है हमारे हेडक्वार्टर में माउंट आबू में, तो उसका बहुत बड़े आप बैकअप में कहें।
एक सेकंड, जो उठ रहे हैं प्लीज, ये सेशन आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको मिस करेंगे, आप कम्युनिकेशन में कुछ होगा, हम परमिशन आगे के लिए देखना पड़ेगा हमें।
और
आप
वैसे भी
रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई भी चीज नहीं मिल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्योंकि आप ठीक से सुनते नहीं है। ये सेशन खास रखा गया है आप सबके लिए, आप हमारे बीच में हेडक्वार्टर, आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। क्या प्रॉब्लम आपकी है हमने जो नोट किया है, इसलिए खास इन्होंने 2.5 वर्ष से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको सामने पता चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है आप और हमारे बीच में, उस गैप को ब्रिज करने के लिए सेशन है। प्लीज जो बाहर भी है मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप वापस कमरे में आ जाए, हल के अंदर आ जाए, क्योंकि अगर इसके बाद भी कोई पूछेंगे तो फिर हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज आप सब बैठिए और इसको आराम से सुनिए, 15 मिनट की बात है। वह उस अगर एक नंबर सेमिनार हॉल में बैठे हैं भाई बहने, यहाँ जगह है बालकोनी में और अंदर भी आप आके सुन सकते हैं, कि अंदर भी जगह है, आइए। ओम शांति।
तो संजय भाई से हम सुनते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि श्रीकांत भाई बता रहे हैं काफी सारी चीजें आप पूछते हैं, तो अभी हम सुनते हैं कि क्या है प्रॉपर वे से, क्या चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और कम्युनिकेशन की।
ओम शांति। वैसे तो यज्ञ हमारा दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है, तो इसके जो भी सिस्टम्स हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। जब भी हम पहले तो हम ईमेल्स के द्वारा या फोन के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन परिवार इतना बड़ा हो गया है और इतने ज्यादा कार्यक्रम पूरे वर्ष में आयोजित हो रहे हैं कि अभी मेल के द्वारा कर पाना संभव नहीं है, या व्हाट्सएप के द्वारा या फिर फोन के द्वारा इतना ज्यादा डेटा एंट्री करना ये अब हम लोग के लिए संभव नहीं रह गया है। तो पिछले 1.5 साल से या कहें कि 2 साल से हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, परंतु कई लोगों को इससे थोड़ी आपत्ति रहती है या कहें परेशानी रहती है, कहते हैं भाई पहले तो ऐसा होता था, अभी क्यों ऑनलाइन कर रहे हैं, हमको नहीं आता, किसी को मेल चलाना नहीं आता है, आदि आदि कई सारी बातें हैं। तो हम आप सबसे यही अनुरोध करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि अब जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, कोई भी हमारा प्रोग्राम होगा, जैसे ORC में होने जा रहा है, और भी जगहों पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे, तो हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। हम जो भी मैनुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप जो भी फॉर्म्स लिख करके भेजते हैं, कई बार आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है, कई बार जब हम डेटा फीड करते हैं तो उसमें हमसे कुछ गलती हो जाती है, फिर प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी। पर आप जब, और वैसे हम अगर 1000 लोग के फॉर्म्स की डेटा एंट्री करें तो हमको महीना लग जाता है, अगर 2-3 लोग मिलकर के भी रोज करें तो, परंतु आपके लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है, आप लिंक ओपन करते हैं और भर देते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर है कि कई लोगों को ईमेल आदि की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आज से 5-7 साल पहले, फोन तो थोड़ा पहले आ गया था, परंतु 5-7 साल पहले तक भी मोबाइल्स की इतनी जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन अब तो हम देखते हैं कि बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जो बड़ी भोली भाली अनपढ़ सी हैं वो भी व्हाट्सएप चलाती हैं, उनको भी इन सब चीजों की जानकारी हो गई है, मतलब ये सब चीजें अब कॉमन होती जा रही है। तो ये मेल वगैरह भी हम सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और अगर हमें नहीं भी आता है तो हमारे घर में, अब तो हर घर में पढ़ने वाले बच्चे होते ही हैं, कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जो ईमेल की जानकारी रखता है, हम उनसे मदद ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो हमारा सेंटर है, हम सेंटर के द्वारा भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आप सबके दिमाग में रहे कि अभी जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सब ऑनलाइन ही किए जाएंगे, तो कोई भी उसको डाउनलोड करके, उसका जेरोक्स निकाल करके, उसे हाथ से भरकर मेल में अटैच करके ना भेजे या व्हाट्सएप से ना भेजे, तो ये पहली चीज, क्योंकि हम लोगों को फिर उसमें बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात कि जब भी हम यहाँ से कंफर्मेशन भेजते हैं तो वो हम हमेशा सेंटर लिखते ही भेजते हैं। हमने उसमें कॉलम रखा हुआ है कि आप अपने सेंटर का ईमेल आईडी भी लिखें, तो हम जो भी कंफर्मेशन भेजते हैं वो सेंटर के ईमेल आईडी पर भेजते हैं और वहां से आपको लेना होता है। इसकी भी जानकारी आप में से कईयों को नहीं है, तो ये भी आपके ध्यान में रहे कि आपको अपना कंफर्मेशन सेंटर से कलेक्ट करना है। उसके पीछे कई कारण हैं। कई लोग कहते हैं आप हमारे मेल पर ही, पर्सनल मेल पर ही क्यों नहीं भेज देते, पर उसके पीछे कई कारण हैं, उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसा भी होता है कि जो परमिशन लेटर है वो भी नकली परमिशन लेटर अपलोड कर देते हैं। तो जब हम टीचर बहन के पास भेजते हैं, आप लेने तो वहां जाएंगे ही जाएंगे, फिर पता पड़ता है कि हाँ आपकी छुट्टी है या नहीं। तो और हम नहीं चाहते हैं कि बिना किसी आप अपनी टीचर बहन के परमिशन के यहाँ पर आए। बाबा ने निमित्त बनाया है बहनों को, सेवा केंद्र संचालिका बनाया है, तो हर काम उनकी स्वीकृति से हो तो अच्छा है। ये एक पारिवारिक सिस्टम भी है, यही हमारी मर्यादा भी है। तो ये भी आपके ध्यान में रहे कि जब भी कंफर्मेशन आपको लेना है, भले आप भरेंगे फॉर्म अपने ईमेल आईडी से, परंतु आपको जो कंफर्मेशन मिलेगा वो आपके सेंटर से ही मिलेगा। दूसरी बात, जब हमने इस मीटिंग के लिए फॉर्म बनाया था, गूगल फॉर्म, उसमें एक कॉलम रखा था कि उसमें आपको अपनी सेंटर की इंचार्ज बहन का परमिशन लेटर अपलोड करना है। तो जैसे हमने ये फॉर्म बना करके भेजा इन्विटेशन लेटर के साथ, दो तीन दिन के बाद ही हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे, मेल्स आने लगे कि भाई लेटर में क्या लिखना है। तो खास टीचर्स बहनों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप सब हमेशा परमिशन लेटर लिखते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, उसका कोई एक कोई फॉर्मेट नहीं है। आप जैसे छुट्टी देते हैं कि भाई इस पार्क मीटिंग के लिए हम इनको छुट्टी दे रहे हैं, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई इसका एक डेफिनेट कोई फॉर्मेट नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर के जिस तरह से आप पत्र लिखते हैं वैसे ही लिखें। इवन कई टीचर्स बहनों ने भी हमें फोन करके पूछा क्या लिखें, तो कई लोगों ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आप एक फॉर्मेट बना करके आप कर देते हैं। तो हमने फॉर्मेट बना करके एक रिवाइज मेल भेजा, और तो कई लोगों ने क्या किया कि उस फॉर्मेट को फोटोकॉपी किया और उसको फोटोकॉपी करके कईयों ने तो अपनी टीचर बहनों से साइन कराया, कई खुद ही साइन करके उसको अपलोड कर देते। कईयों ने अपना फ्लाइट का टिकट अपलोड कर दिया, कईयों ने अपना ट्रेन का टिकट अपलोड कर दिया, कईयों ने बेंगलोर में जो भर्ती हुई थी उसका कर दिया, जो बेंगलोर में पुराना परमिशन लेटर था उसका कर दिया, और कईयों ने अपने ही सेंटर के टीचर बहन का सिग्नेचर करके। फिर बाद में जब हमने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, दीदी हमारी छुट्टी देती नहीं भैया क्या करें, दीदी ना थोड़ा सुनती नहीं, पर जो भी हो आपके रिलेशंस हैं उसमें हम नहीं जाना चाहते, पर हमारा ध्येय इतना है कि हम किसी को भी टीचर्स बहनों के परमिशन के बिना हम यहाँ नहीं बुलाना चाहते। भगवान ने निमित्त बनाया है, बाबा ने निमित्त बनाया है, तो हमें उनकी कदर जरूर रखनी है। तो ये भी आपके ध्यान में रहे कि अगर आप पढ़ें उसको क्लियरली, सब कुछ उस लेटर में मेंशन्ड रहता है कि ये फॉर्मेट है, ये परमिशन लेटर नहीं है। अच्छी तरह से तीन तीन मेल गए कि इसको जो है आपको सेंटर के लेटर हेड पर लिखवाना है, वो प्रॉपरली टीचर बहन के द्वारा साइंड और स्टैम्प्ड होना चाहिए। फिर भी बहुतों के जो है ना तो स्टैम्प होता है, कईयों में सिग्नेचर नहीं होता है, कई लोगों ने तो टाइप से सिग्नेचर भी टाइप किया हुआ है, वो तो सिग्नेचर तो टाइप नहीं होता है। तो ये सब कई बातें देखने में आई। दूसरा कि अभी ट्रैवल डिटेल्स, हम सब आप यहाँ आते हैं आप जाते हैं, तो आपके आने जाने में आवागमन में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम सब ट्रैवल डिटेल्स भी मांगते हैं। तो ट्रैवल डिटेल के लिए भी आपके कंफर्मेशन के साथ एक लिंक जाता है, तो ये भी आपके ध्यान में रहे कि आपको ट्रैवल डिटेल भी ऑनलाइन ही भरना है, उसको मेल के द्वारा नहीं भेजना है। कई लोग तीन तीन बार, आप लोग अपना मेल खोल करके चेक कर सकते हैं, तीन तीन चार चार बार मेल भेजने के बाद भी लोग अपना टिकट अपलोड कर देते हैं, टिकट भेज रहे हैं, कोई लिख करके हम इतने लोग आ रहे हैं इतने लोग आ रहे हैं। तो कृपया इसका भी थोड़ा सा आप सब ध्यान रखेंगे। जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और किसी भी कारण से यदि आपको आपका कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो एक सप्ताह के अंदर विद इन 7 डेज आप जरूर फोन करके या मेल डाल करके उसको कंफर्म करें कि भाई हमारा कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं। ऐसा नहीं कि आज भरा और कल ही हम पूछना शुरू कर दें, ये भी नहीं है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर आप जरूर ये कंफर्म करें कि भाई हमारा कंफर्मेशन मिला नहीं है, क्या बात है। नहीं तो लोग तीन तीन महीने के बाद, 10 अक्टूबर को ये रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया था और कई लोग प्रोग्राम शुरू होने से एक हफ्ता पहले फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब मेरा कंफर्मेशन नहीं आया। तो ये भी आप सबके ध्यान में रहे। और जैसा कि श्रीकांत भाई ने बताया कि कई लोग ये पूछते रहते हैं कि हमको सूचनाएं नहीं मिल रही हैं, कोई हम स्पार्क की ओर से आता नहीं है मैसेज, तो इसके बारे में दो तीन बातें आपको कहनी है। एक तो कईयों को ईमेल्स की इतनी जानकारी नहीं होती है, तो या तो किसी भी कारण से या उनकी गलती से वो स्पैम में चला जाता है, तो वो ध्यान रखें कि जो भी स्पार्क गूगल ग्रुप में हमने अपना ईमेल आईडी दिया है और स्पार्क का जो ईमेल आईडी है वो स्पैम में ना जाए, क्योंकि स्पैम में जाएगा तो वो आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग गूगल ग्रुप से जुड़े नहीं है। हमारे आपके पास संदेश पहुंचाने का हमारे पास यही एक ठोस तरीका है। व्हाट्सएप के द्वारा हम ऑफिशियल कारोबार इतना नहीं कर सकते, व्हाट्सएप तो इतना खिलौने जैसा हो गया है, इतने ज्यादा मतलब हम भेजें उससे ज्यादा तो हमारे पास आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो व्हाट्सएप में हम इतना कीबोर्ड यूज करके इतना सारा टेक्स्ट मैसेज हम टाइप नहीं कर सकते, ये तो व्हाट्सएप से इतना रियली पॉसिबल नहीं है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नेसेसरी मैसेजेस के लिए ग्रुप बनाया जाए, लेकिन जब तक बने तब तक हमारे पास ईमेल ही एक साधन है जो आपके पास सूचनाएं हम भेज सके। तो जो लोग भी गूगल ग्रुप से, स्पार्क के गूगल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपना ईमेल आईडी स्पष्ट अक्षरों में लिख करके या तो हमें मेल कर दें या लिख करके दे दें। बेहतर ये होगा कि हम मेल कर दीजिए तो हम उसी समय आपको गूगल ग्रुप से जोड़ देंगे और आपको मैसेज मिलती रहेगी। कई लोग फोन करके कहते हैं 10 दिन पहले किसी ने, कम से कम 10 लोगों ने फोन किया होगा, भाई साहब हमको मीटिंग में आना है। मैंने कहा अब तो क्लोज हो गया, आप बहुत देरी से फोन कर रहे हैं। बोला हम देरी से थोड़ी कर रहे हैं, आपने हमको कुछ भेजा ही नहीं, हमको कुछ मिला ही नहीं, हमको तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैंने कहा आपको पता नहीं तो आपने हमें फोन कैसे किया? तो कह रहे हमें तो किसी और से सुनाई पड़ा। तो हमने कहा भाई उनको मिला तब तो उन्होंने आपको बताया ना, तो आप अगर हमें अपना ईमेल आईडी देंगे नहीं तो हम कैसे मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग लिख लीजिए स्पार्क विंग बीके। अभी तो ये एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि ये ईमेल आईडी अभी बंद होने जा रहा है, लेकिन एक महीने तक ये चालू रहेगा। एक महीने के भीतर भीतर आप लोग अपना इसमें जो भी भेजना हो भेज सकते हैं, उसके बाद ये ईमेल आईडी क्लोज होने जा रहा है। स्पार्क में बहुत सारी ईमेल आईडी हो गए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो हम कुछ ईमेल आईडीज बंद करने जा रहे हैं। जी हाँ, कंफ्यूजन होता है, ये हमें फीडबैक मिला है, कंफ्यूजन होता है, तो हम दो तीन ही रखने वाले हैं अपने ऑफिशियल कारोबार के लिए, कुछ को बंद करने जा रहे हैं। जी जी, तो हम इसको आपको अपडेट करेंगे, वो भी गूगल ग्रुप के द्वारा ही अपडेट करेंगे जब ये बंद होगा। फिलहाल आप इस पे 15-20 दिन के अंदर भेज सकते हैं sparkwingbk@gmail.com। sparkwingbk सारा स्मॉल में रहेगा, sparkwingbk@gmail.com। इस पर जिसको भी गूगल ग्रुप से जुड़ना है आप अपना ईमेल आईडी इसमें लिख करके हमें एक मेल लिख दें कि हम गूगल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो हम ये जो लिस्ट है उसको अपडेट कर देंगे और आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, स्पार्कविंग SPARC SPARKWING BK@gmail.com इस पर आपको भेजना है। बाकी आगे हम कौन सा ईमेल आईडी यूज करेंगे वो हम आपको बता देंगे।
सबने लिखा तो एक हाथ उठाइए ताकि आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबने लिख लिया। ओके, जो साहूकार भाई बोल रहे थे इस पर अटेंशन दीजिए। अगर आपको कई बार कंफ्यूजन होता है तो आपको जिस ईमेल आईडी से कम्युनिकेशन गया है उसी को रिप्लाई कर दो।
हाँ,
आप जो कंपोज करते हैं तो कई ईमेल आईडी आ जाएगा, लेकिन अगर उसी को रिप्लाई करते हैं तो उसी में आएगा। ये ध्यान रखिए,
एक चीज और भी
सिंपल सिस्टम है।
एक चीज और भी ध्यान रखना है, बहुत सारे भाई बहने क्या करते हैं कि कोई भी एक मैसेज भेजना होता है ना तो स्पार्क के 4 या 5 ईमेल आईडी सब पे भेज देते हैं, सभी पर भेजा। अब होता क्या है कि किसी को मैं एक्सेस करता हूँ, किसी को श्रीकांत भाई जी एक्सेस करते हैं, किसी को कोई और एक्सेस करता है, पूरी एक टीम है ना इस स्पार्क ऑफिस को देखने के लिए, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। अब क्या होता है कि आपने वो समझिए मैसेज मेरे लिए है, मैं उस कारोबार को देख रहा हूँ, मैंने किया, 4 दिन के बाद उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। सपोज श्रीकांत भाई कहीं ट्रैवलिंग में गए हैं, उन्होंने वही फॉरवर्ड, अब मुझे याद तो नहीं है दिन में 100 मेल आ रहे हैं, 50 मेल आ रहे हैं, 50 कॉल्स आ रहे, क्या किसको मैंने क्या रिप्लाई किया, क्या बात किया, हमें ध्यान नहीं है। अब वही चीज दोबारा हो जाता है, एक ही व्यक्ति को 2 बार कन्फर्मेशन चला जाता है, एक ही व्यक्ति को 2 बार रिप्लाई चली जाती है, 3 बार चली जाती है, वो 5 मेल फॉरवर्ड होके फिर हमारे पास आते हैं। तो जिस मेल, जो मेल जिसके लिए निर्धारित है, कृपया उस पर ही अपना मैसेज भेजें। ऐसा नहीं कि सबको भेजें, आपको कोई सेवा की रिपोर्ट भेजनी है, कोई और जानकारी, 5ों पे भेज देते हैं, तो कृपया इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एक दो थोड़ी सी आपकी अटेंशन पे देने वाली बातें हैं। पिछले वर्ष भी हमने पहले दिन भी ये बात आपके ध्यान में दिलाई थी और इस बार भी ये ध्यान में दिला रहे हैं। पिछली बार भी कुछ कंप्लेंट्स आई थी जब हम बिल्डिंग्स में रखते हैं तो स्वच्छता आदि की बात को लेकर के, कल रात को, परसों रात को हम यहाँ से करीब 11 बजे रात को जब हम सारा वाइंड अप करके 11:30 बजे रात को हम बैकुंठ में गए तो हमें थोड़ी चाय पीने की इच्छा हुई, हम 4-5 लोग थे। हम वहां पर गए तो सारे कप्स जूठे पड़े थे, सारी केवियां जूठी पड़ी थी, इवन जो छन्नी है ना चाय की वो भी जूठे में रखी हुई थी। हम सब देवी देवता बनने वाले लोग हैं, हमें तो हर काम इशारे से करना चाहिए, बोलने की जरूरत ना हो, हम सब साधक हैं, आत्म परिवर्तन ही हमारा लक्ष्य है। और वैसे भी स्पार्क के प्रति सबकी भावनाएं यहाँ बहुत अच्छी हैं, हम कुछ ऐसा ना देखें, हम ये जानते हैं सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं, परंतु नाम सबका खराब होता है। वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कृपया चाय बनाने के बाद अपने बर्तन खुद धुलाई करें, हम पीते हैं। और वैसे भी अस्त व्यस्त टब में जो नहीं जगह है जमीन पे रख दिया इधर, फिर हम लोगों ने जाकर के केवियां धुलाई की, विनय भाई भी थे, विनय भाई जी ने अपने हाथ से सब धुलाई किया, कप्स धुलाई किए। और मतलब ये मैं समझता हूँ कि अगर बैकुंठ में हुआ है तो दूसरे बिल्डिंग्स में भी हुआ होगा, हमें अपना कप धोने में कितना मिनट लगता है, ये हमारा ये भी तो एक संस्कार है ना। छन्नी को कभी भी जूठे में नहीं डाला जाता है, वो भी कप्स के साथ जूठे में डाल दिया। तो इन सब चीजों का, हम चाय बनाते हैं दूध गिरा हुआ है थोड़ा सा उसको वाइप भी नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं। कृपया, वो बिल्डिंग वाला भाई हमको सुना रहे थे, हम पे नाराज हो रहे थे, अब आपको तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, या तो सुनना हमें पड़ता है या तो श्रीकांत भाई को, क्योंकि यहाँ लोग हमको, हम लोगों को जानते हैं। फिर हमें बोल रहे थे संजय भाई ये क्या सिखा रहे हैं आप लोग, यही सब आप, इतनी अच्छी अच्छी बातें होती, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, ये देख रहे हैं ना, मुझे लेके जाकर के दिखाया। तो ये बातें अच्छी नहीं है, सुनकर थोड़ी तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा अपनी मर्यादा हम खुद बना करके रहें, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, हमें कोई और देखे ना देखे, बाबा तो हमें देख रहा है ना, हमारा तकदीर, हमारा भाग्य ये हमें देख रहा है। ये सब चीजें हमें सीखनी है, ये कहने की बात नहीं है। उस दिन सेलिब्रेशन के दिन इतना अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा है, स्पीकर बोल रहा है, इधर आइसक्रीम बट रही है, सबको मिलना है ना, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। हम तो हर चीज 200-300 ज्यादा ही मंगाते हैं, पर ऐसा जल्दी जल्दी 2 मिनट देरी से मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, परंतु एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है जाने के बाद। जो बड़े लोग होते हैं वो पीछे से हम लोग को कहते हैं तो सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो कृपया
बातें बताई, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें बताई, तो ये तो बहुत स्वाभाविक है जब हम बड़े जगह पर आते हैं। देखिए हम 4 दिन से यहाँ है, ना हमें खाना बनाना है, ना हमें सब्जी काटनी है, बहुत बड़ी बात होती है, छोटी सी चीज है, लेकिन इतना सिस्टमैटिक बाबा के घर में हमें सब चीज मिल जाती है। तो थैंक यू बाबा का भी, बाबा इतनी पालना देते हैं और संजय भाई ने बहुत प्यार से सब चीजें हमें बताई। तो अभी प्रदीप भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं और प्लानिंग फॉर फ्यूचर सर्विस एंड सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो संजय भाई ने और श्रीकांत भाई ने थोड़ा सा हमारे साथ शेयर भी किया आगे आने वाले प्रोग्राम के लिए, तो उसी को आगे किस तरह से उसकी प्लानिंग है प्रदीप भाई हमें बताएंगे। आप कोर ग्रुप मेंबर हैं स्पार्क दिल्ली। प्रदीप भाई
आप सभी, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो ध्यान से सुनिए, जस्ट आपको सेवा की लिस्ट बताया जा रहा है और इसकी डिटेल्स आपको मेल कर देंगे ताकि आप मेल पढ़ने के बाद फिर आप और ज्यादा कम्युनिकेट हो सकेंगे। तो आप सिर्फ ध्यान से सुनिए सेवा क्या क्या सेवाएं, कल कुछ रह गया था तो अभी आपको सुनाया जाएगा।
ओम शांति। जैसे श्रीकांत भाई कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ रह गया था वो तो शेयर करेंगे ही, लेकिन एक रिकैप के लिए कि थोड़ी याद और ताजा हो जाए तो ब्रीफ में मैं बड़ा आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज हम ये सिल्वर जुबली ईयर के अंदर करने वाले हैं, जिसका थीम दिया हमने मेडिटेशन रिट्रीट एंड सेलिब्रेशन ऑफ स्पार्क सिल्वर जुबली। इसमें देखिए जो इस सिल्वर जुबली के दौरान जो हमारी 14th सर कॉन्फ्रेंस है उसकी डेट तो फिक्स हो चुकी है, जो आपने नोट नहीं करी हो तो प्लीज कर लीजिए। ये 28 अगस्त से 1 सितंबर 2020 और ये ज्ञान सरोवर में रहेगा। इसमें देखिए एक चीज का हमें ख्याल रखना है कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन है अप टू 400 जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स पीएचडी डॉक्टर्स एंड स्कॉलर्स और वाइस चांसलर्स लेवल के जो लोग हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, तो कोशिश ये करिए कि जो लोग पहले आज भी चुके हैं उनके अलावा अगर नए इस लेवल के और लोग हैं जिस आपके एरिया के जो इंस्टीट्यूशन हैं तो उन्हें भी निमंत्रण दीजिए से नए ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स एंड डेलीगेट्स हैं ये स्पार्क से जुड़ सकें। जो ग्रैंड मेगा इवेंट है 3 से 4 दिन का, इसमें जैसे पहले भी शेयर किया गया है अभी थोड़ा संजय भाई ने भी बताया आपको कि 5,000 to 10,000 कैपेसिटी का हमारी तैयारी रहेगी और ये शांतिवन में जो है डायमंड हॉल में करने का विचार है। इसमें मिक्स रहेगा डेलीगेट्स और बीके स्पार्कनर जो हैं और रिसर्चर्स वगैरह और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन उनका रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर इवेंट में रहेगा और इसमें भी आप अभी से ही अपना जो भी एक्शन प्लान बनाना है अपने क्षेत्र अपने जोन और लोकल चैप्टर के लिहाज से उसका अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, स्टार्टिंग विद द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन योर एरिया आपके क्षेत्र में जो है। ऑल द स्पार्क मेंबर्स इज रिस्पेक्टिव ऑफ द और आप सब इसमें आमंत्रित हैं। दूसरा जो हमारा एक्टिविटी रहेगा 25 बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर जो नोन हैं जो पद्मश्री या पद्म विभूषण जिनको मिल चुके हैं भारत सरकार से, उस लेवल के साइंटिस्ट एजुकेशनिस्ट और एक्सपर्ट जो हैं उनका एक प्रोग्राम किया जाएगा 25 बड़े साइंटिस्ट का और दिस विल ऑल्सो भी 25 जगह होगा, ये भी 25 जगह पर होगा। दैट मीन्स कि हम पूरा हिंदुस्तान जो है इंडिया पूरा कवर कर सकते हैं, तो ये भी आप फोकस करिए कि आप कहाँ करवाना चाहते हैं इन योर जोन। और जो हमारे स्पार्क मेंबर्स हैं जिन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है स्पार्क की इस 25 साल की जर्नी को और जो 95 में शुरुआत हुई थी और आज 2020 तक लाने में जिनका बहुत परिश्रम भी रहा है इंटेंशन भी रही है उनको को भी ऑनर किया जाएगा। इस दौरान एक बुकलेट भी डिजाइन की जा रही है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ऑफ वेरियस डिफिकल्ट सिचुएशन, जो आप एज स्पार्कलर जो आपको कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ी हैं उसको मद्देनजर रखते हो और उसका क्या सॉल्यूशंस होंगे या अभी तक सॉल्यूशन दे दिए जा चुके हैं उस पर भी एक बुकलेट एक इंफॉर्मेशन बुकलेट तैयार की जाएगी। इसके अलावा 25 बड़ी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी कई प्रोग्राम होंगे। ये डिफरेंट आप साइंस के अलावा और क्षेत्र भी देखिए, एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एजुकेशन जो भी क्षेत्र हो, जैसे बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जिसके 17 गोल हैं और 17 मुद्दे उसके अंदर आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम poverty eradication to education to health and other areas. एक और क्षेत्र में काम शुरू करने जा रहे हैं, राज्यों का गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग. जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो है सतयुग में कैसा रहना होगा, कैसे एक्टिविटीज होंगी, कैसे गवर्नेंस होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, और एक गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी उसी लाइन्स के ऊपर. और जो हमने अपने ज्ञान में भी पढ़ा है और सीखा है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तब वहां रहन सहन, साइंटिफिक, सोशल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कैसे रहेंगी, उसको मद्देनजर रखते हुए. और इसमें हम सिर्फ जो है मीटिंग्स रहेंगी हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और जो थॉट लीडर्स हैं, जो विचारक लोग हैं, उनके साथ बैठकर जो हर एक क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, उसके लिए भी इस पार्क के अंदर एक जैसे विजडम सर्कल्स है वो बनाए जाएंगे कि इस विजडम सर्कल वो इस क्षेत्र में काम करेगा, ये विजडम सर्कल इस क्षेत्र में काम करेगा. एक स्पार्क कार्निवल भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्पार्क सुविनियर भी पब्लिश किया जाएगा, और दो बुक्स, जैसे कहा बुक ऑन राजयोग रिजल्ट्स, राजयोग मेडिटेशन से जीवन में लोगों का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या परिवर्तन आया है, उसकी एक बुकलेट भी निकाली जाएगी, जो कि सर्कुलेट करिए आप अपने सर्कल के अंदर कि बाकी जो नॉन बीकेस हैं उन्हें भी मालूम पड़े कि राजयोग मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट है. जैसे डीआरडीओ में भी किया गया था इम्पैक्ट ऑफ राजयोग मेडिटेशन ऑन द ब्रेन, और काफी पॉजिटिव रिजल्ट आए थे डिफेंस और साइंस के क्षेत्र में उनके बिहेवियरल पैटर्न में चेंज लाने के लिए. बुक स्पार्क जर्नी सो फार, और एक बुक छपेगी स्पार्क जर्नी सो फार. स्पार्क इंट्रोडक्शन किट बनाया, जिसमें एक बुकलेट होगी स्पार्क के बारे में, अबाउट स्पार्क, एक सीडी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और जैसा एक चीज कल शेयर करी थी कि हम जो है वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी स्पार्क के ऊपर बना रहे हैं. स्पार्क की एक एंथम, जैसे नेशनल एंथम है हमारी, ऐसे स्पार्क की एक एंथम भी तैयार हो रही है, उसके लिरिक्स तो आ चुके हैं.
एंथम सॉन्ग नहीं होगा, थीम सॉन्ग होगा.
थीम सॉन्ग,
थीम सॉन्ग,
थीम सॉन्ग. तो मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को. ग्रीटिंग कार्ड्स और स्पार्क ग्रीटिंग कार्ड्स भी बनवाए जाएंगे, और बाकी डिटेल तो आपको ये मिलती रहेगी. सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों का पूरा जीवन का एक तथ्य है, 25 साइलेंस भट्टी रखी जाएंगी. तीन तरीके की भट्टी होंगी, साइलेंस भट्टी, 25 भट्टी होंगी जो कि समय और दिन फिक्स किया जाएगा उसी समय पर पूरे भारतवर्ष में होगा, और एक 25 भट्टी होंगी जो आप अपने हिसाब से समय और अपने लोकल एरिया के अंदर वो आप फिक्स करें. 25 से ऊपर भी हो सकती है. इसके अलावा लाइफ स्किल्स के बारे में आपको डिटेल में बताई दिया गया है. बस एक ये रहेगा श्रीकांत भाई कि जो भी ये एरियाज हैं वो आपने नोट भी करनी है, थोड़े समझ भी लिए हैं. इस क्षेत्र में आपका कोई सजेशन आइडियाज हो वो भेजें. आप किस क्षेत्र में आप क्या सेवा दे सकते हैं अपने टैलेंट, अपने एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, तो प्लीज आइए साथ में. ओम शांति. धन्यवाद. तब तक एक पॉइंट और है, जस्ट लास्ट पॉइंट, सॉरी. इमोशनल वेलनेस, ये किट भी एक बनाई जाएगी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर्स. थैंक यू.
थैंक यू प्रदीप भाई, आपने बहुत अच्छे से हमें आगे की फ्यूचर प्लानिंग सारी बताई, और हम जरूर उसमें मिलकर सहयोगी बनेंगे. तो अभी अलका दीदी जी हमारे बीच में बैठे हैं, और हेमा दीदी भी बैठे हैं, नीलिमा दीदी भी बैठे हैं. तो दीदी आप प्लीज मंच पे आ जाएं. और अभी हम श्रीकांत भाई से भी सुनते हैं, जो प्रदीप भाई ने बताया वही के आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं, और आगे की हमारी सर्विसेज के बारे में. तो श्रीकांत भाई आप भी इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बताएं.
ओम शांति. ने सब डिटेल्स हो चुका है, मेरा बस एक ही अपील रहेगा, पूरा जो भी आप सबने सुना, चाहे पुरुषार्थ की प्रोजेक्ट हो या सेवा की प्लानिंग, यहाँ जो भी बैठे हैं, आप सबकी व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन आप तीन तरीके से दे सकते हैं। एक, जैसे प्रदीप भाई ने एड्रेस किया, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड गेस्ट जो हैं, डेलीगेट्स जो होंगे, आप उनको जरूर आमंत्रित करें। चाहे जो अगस्त में लास्ट वीक में स्पार्क की कॉन्फ्रेंस है 28 अगस्त से 1 सितंबर के लिए, या जो हमारा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होगा डायमंड हॉल में उसके लिए, और ये ज्ञान सरोवर प्रोग्राम के लिए नॉन बीक रिसर्चर्स, और सिल्वर जुबली प्रोग्राम के लिए नॉन बीक और बीक के दोनों। जैसे हमने कल परसों कहा था सेलिब्रेशन में कि आप अभी एक आए हैं तो एक कितने लेकर के आएंगे आप? 1, तो एक के आगे 0। मेरे पास मृत्युंजय भाई बैठे थे, वो कह रहे थे कि आप बहुत बढ़िया संख्या बता दिया, एक के आगे 0। एक मैं हूँ, 0 कौन है? बाबा। तो बड़ा एक रिदम बन रहा था। तो आप सभी 1-10 लेकर के आएंगे? हाथ उठाए जो 10 लेकर के आएंगे। अगर आप सभी 10-10 लेके आएंगे तो 8000 हो जाएगा, बड़ा मेगा प्रोग्राम हो जाएगा, अपने आप में स्पार्क फ्लेम हो जाएगी, ठीक है? लेकिन थोड़े हाथ उठे, सबका नहीं उठा, अभी भी सभी का नहीं उठ रहा है। समझ में नहीं आ रहा शायद, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। रमेश भाई जब होते, जो रमेश भाई को देखा है वो स्टेज के ऊपर से बोलते थे ना, क्या बोलते थे? अभी सभी का नहीं हुआ, तो अभी सभी मेहनत करें, क्योंकि हम सभी मिलके, बाबा रमेश भाई बार बार कहते थे स्पार्क सिर्फ विंग नहीं है, ये परिवार भी है ना। तो परिवार सभी के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। और एक बात कहना था, जैसे संजय भाई बता रहे थे आपको, मुझे लगता है कि परिवार की बात है, आपको बुरा नहीं लगा होगा, एक्सेप्ट करते ना इस बात को? एक्सेप्ट करेंगे तो आगे हम सहयोग देंगे। तो ये बात हम कहना चाहेंगे, जब हम एकोमोडेशन के लिए बात कर रहे थे तो मैं वहां बैठा था, तो एकोमोडेशन का भाई बोल रहा था कि एक प्रोग्राम होता है शांतिवन में जहां लोग बाहर नहीं जाते घूमने के लिए, वही स्पार्क का प्रोग्राम। तो जो सेवा करने वालों के रिस्पॉन्स है, अगर छोटी छोटी बातें आपके ध्यान में दिया गया है, ये इसलिए दिया गया हम और बेहतर करें, इतना और कुछ नहीं। कोई बुरा बात नहीं कह रहे कि हम उस प्रकार से करें, ताकि ये सिर्फ मीटिंग नहीं, ये भट्टी भी है। आज भाई बात कर रहे थे कि पूरा टाइट प्रोग्राम है, ये टाइट प्रोग्राम नहीं, ये टाइट भट्टी है, सोचिए आप। क्योंकि आपको एक कमरे में बिठा दिया गया, सुन रहे हो, समझ रहे हो, एक तरीके से आपका शरीर एक जगह पर बैठ गई, भट्टी हो गई आपकी। बाबा तो ऐसे करते थे ना एक कमरे में, ये टाइट शेड्यूल नहीं है, टाइट भट्टी है, समझ लीजिए आप। आगे भी ऐसे रखेंगे हम, कोई ढीला नहीं होगा, ठीक है? अभी दिन में 3 घंटा मिल रही रेस्ट, अगले साल सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा आपको, राजी हैं? फिर देखेंगे आपकी रुचि कितना है, क्योंकि तपस्या ऐसे होता है, हर बार आप पॉइंट ऑफ लाइट बनोगे नहीं बन पाओगे, ठीक है? तीसरी बात जो कहना चाहेंगे, जो कम्युनिकेशन की बात हुआ, मैं तो आप सबकी, रमेश भाई बहुत अच्छी तरीके से 4 साल पहले कहा था कि स्पार्क की कम्युनिकेशन पेपर वर्क में नहीं होना चाहिए, और आप सबको दिल से धन्यवाद। हम अभी कोई भी पेपर वर्क कम्युनिकेशन में नहीं कर रहे, चाहे कोई भी, हाँ 90% कम्युनिकेशन सक्सेस हुआ है हमारा, 10% जो है वो अगले साल के प्रोग्राम में हम आपकी सहयोग से बेहतर करेंगे जरूर। लास्ट बात, जो आपने रुचि से पार्टिसिपेट किया और बड़े दिल से आप आए, बहुत अच्छा लगा, ये हल भी भरा, और बाजू वाले हल में भी हम रखे भाई बहनों को पार्टिसिपेट किया, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो अगर अगले साल कोई भी सेवा हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आप जो पार्टिसिपेट करेंगे आपको यही सहयोग मिलेगा। और लास्ट में जो जो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं लास्ट उसको रिपीट कर रहा हूं, आप मनोटनस होकर के उसको न करें, आप अपने सुझाव दें, अपने रिसर्च स्किल को लेकर के आए, चाहे कमेंट्री हो, चाहे चार्ट हो, मुरली पॉइंट्स हो, आप सबकी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम सभी कोऑर्डिनेटर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, उनको पूछेंगे भी आपकी पार्टिसिपेंट्स जो है वो आपको कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप सभी की मिलेगा। और जो टीचर्स बहने आए हैं, आप सबसे निवेदन रहेगा, अगर आप चाहो तो अपने सेंटर पर स्पार्क के लोकल चैप्टर खोल सकते हो। आज एक लोकल चैप्टर आपके सामने ऑफिशियली ओपन होगा। हम चाहेंगे आप इशू बहन है पुणे सेंटर जो एरवाडा सेंटर की बहन आप स्टेज पर आए, आपको यहाँ आपकी लोकल चैप्टर की सर्टिफिकेट दी जाएगी ऑफिशियली परमिशन। इशू बहन अगर बाहर है तो इशू बहन लेटर लाइए। इनकी विशेषताएं 6 महीने पहले इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था, हमने कहा आप मीटिंग करके रिपोर्ट देंगे तभी आपको सर्टिफिकेट देंगे। इन्होंने कंटिन्यूस मीटिंग किया मंथली और रिपोर्ट आया और आज स्टेज के ऊपर से इस सेंटर की लोकल चैप्टर ऑफिशियली बन रही है। ओम शांति।
ओम शांति। आप सोच रहे होंगे और बाकी कितना है, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ही प्रोग्राम शेष है क्योंकि दीदियां हमारे बीच में हैं, तो ग्रीटिंग्स या ब्लेसिंग्स तो अब नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी हम पूरा कर रहे हैं और क्या यहां से लेकर जाएं, मतलब आपकी कुछ भी ऐसी बात जो हमारी दीदियों को हमसे है, मैं चाहूंगी कि वो हमारे बीच में जरूर शेयर करें। तो सर्वप्रथम मैं अंबिका दीदी को चाहूंगी। दीदी बहुत देर से हमको सुन रहे हैं, इतना सारा प्रोग्राम प्रोजेक्ट सब चीजें सुनी, सबके अनुभव सुने, तो दीदी आप भी कुछ बताएं।
ओम शांति। स्पार्क विंग से जो बाबा की उम्मीदें हैं और बड़ों की जो उम्मीदें हैं, सारे देश विदेश से लेकर मधुबन निवासियों की भी जो उम्मीदें हैं, वो सब स्पार्क विंग मना पुरुषार्थ वाले और उन बातों की गहराइयों में जाने वाले जो बाबा देखना चाहते, ऐसे आप सबकी इमेज है। तो इसलिए अभी कई बातें जो संजय भाई कह रहे थे तो छोटी छोटी बातें ही हो लेकिन उसका जो असर है दूसरों पर वो बहुत खराब पड़ता है। तो इसलिए परिवर्तन शक्ति को ये छोटी छोटी बातों में ऐसे प्रयोग करें जो सदा काल के लिए ये बातें ना रहे, कोई आपको ये ना कहे आप अपना स्लीपर सीधा रखो या ग्लास उधर धो के रखो या इसको ये रखो, ये देवताओं को बोल के कराना मना, ये आपकी इंसल्ट है। बाबा कहते थे जब साकार में थे तो सहज मिले सो दूध बराबर, बोलने से मिले तो पानी बराबर, खींच के लेने से खून बराबर। तो हमको बोलते हैं तो वो पानी बराबर, वो मनुष्य के समान इशारे से समझने वाले देवता ना, बोलने के बाद समझने वाले मनुष्य, बोलने के बाद वो तो आप समझिए। तो ये जो भी बातें हैं बाबा, इसके कारण ये है कि हमारे अंदर ऐसे नहीं ज्ञान नहीं है या परिवर्तन शक्ति नहीं है, सब कुछ है लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है ना समय पर, जो उसके वो स्मृति में रह करके वो करना उस घड़ी, ये सिर्फ अटेंशन की बात है। तो हर चीज अमृत वेले से लेकर रात सोने तक जो भी नियम के प्रति श्रीमत है या मर्यादाओं के प्रति श्रीमत है, सभ्यताओं के प्रति श्रीमत है, अपने हर व्यवहार छोटी छोटी व्यवहार के प्रति जो भी श्रीमत है, ये सब जैसे ऐसे बड़े आते हैं, आप देवता ही हो ना, आप दूसरों को दृष्टि देने वाले, इतना रॉयल्टी से खड़े हो जाओ, धक्का दुखी नहीं। छोटी छोटी परिवर्तन, ये आपकी रॉयल्टी है, आप पूज्य आत्माएं हो, तो इसमें थोड़ा सा अपने स्वमान की उस घड़ी प्रयोग करो। तो ऐसे हर चीज भोजन के प्रति, ऐसे नहीं हमको दिल है तो पिज्जा मंगाओ, ये करो, वो खाओ, ये खाओ, तो नियम को छोड़ के सिर्फ लालच के कारण जीभ के कंट्रोल नहीं, तभी तो बाहर के हम खा लेते हैं, कंट्रोल में नहीं है। तो लेकिन एक एक जन्म की, एक समय की, ये जो जीभ हमारे जन्मांतर की प्रारब्ध को खत्म कर देता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर क्लीनलीनेस, पवित्रता के बहुत गहराई से कनेक्शन है, हमको बहुत स्वच्छ साफ रहना है। स्नान लास्ट टाइम, माफ करना हमें, लास्ट टाइम जो मुझे कंप्लेंट मिला, रूम में 5 लोग हैं, सब नियमित है, एक ऐसे वैसे आधा नियम पर आ जाते जो वॉशरूम में जाके स्नान करने वगैरह आ जाते और कहते हैं हम गृहस्थ में थोड़े ये सब कर सकते हैं नियम। तो ऐसे को स्पार्क में रहना नहीं चाहिए, मैं खुला बोलती हूँ, जो नियम प्रमाण चल नहीं पाते हो आप दूसरों के लिए गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको दूसरे मधुबनवासी भी देखेंगे ये कैसे चलते हैं। तो इसलिए आप सबको, चाहे घर में रहो चाहे कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, लेकिन आप एक मॉडल हो। आपके प्रति जो बाबा की इतनी बड़ी बड़ी अभी जो प्रोजेक्ट्स लिया है वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नियम नहीं है ना, उल्लंघन है, उल्लंघन का बोझ चढ़ता है। छोटा छोटा भी करते हो लेकिन बोझ चढ़ता है, जिस कारण योग नहीं लगता, ज्ञान की धारणा नहीं होती है, श्रेष्ठ कर्मों की जमा नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, भाई हो या बहन हो, अपना जैसे दीदी कह रहे थे माथुर जी इतने बड़े साइंटिस्ट, उनको बाबा ने छुट्टी नहीं दिया, कहा थोड़ा सा सारा मिक्स करके खिचड़ी बनाओ और दही खाओ। अगर बिल्कुल आप फ्रूट्स तो आई ही, वेजिटेबल्स तो आई ही, सब उसमें डालिए और बनाइए, खाइए। हरूभरू जीभ थोड़ा पेट थोड़ा ही पूछता है आपको, हमको पिज्जा ही दियो, पकड़ा ही दियो, और वो ही दियो, यही दियो, ये तो पूछता नहीं है बेचारा। तो इसलिए शरीर को सिर्फ पेट्रोल चाहिए, चलाना है इसको, अच्छी तरह से चलाइए। लेकिन नियमों को क्या है, आप उन्नति के लिए यहाँ आते हो, अगर नियम टूटता है तो फिर उन्नति नहीं होती है, योग पावरफुल नहीं रहता, योग स्ट्रांग नहीं रहता, कुछ भी नहीं। सी लास्ट टाइम जानकी दादी एक बात शेयर कर रहे थे, 93 इयर्स की एक माता, उसको एक अकेली रहती है, दादी ने कहा तुम अकेली नहीं रहो इस आयु में, वो बेटे के पास भी जाना नहीं चाहती है, क्यों माना, वो उनका खाना मैं नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैं अपने आप का बना के खाती हूँ, निश्चिंत रहती हूँ। दादी ने बहुत बोला, नहीं दादी आप चिंता नहीं करो, मेरा बाबा बना के मुझे खिला रहा है, ऐसे करके वो सब कुछ अपना खा रही, अपना ही करती है। इट इज ऑल द विल, ये दृढ़ता, एक श्रीमत के लिए 93, उसकी बेटा बहुत बुलाता है, अभी आप नहीं बनाओ, हम सारा आपका जो नियम है वैसे ही हम करेंगे, भगवान को भोग भी लगा के आपको खिलाएंगे, आप तो आ जाओ तो सही। वो कहती है नहीं, जब तक मैं, मुझे बाबा कराएगा मैं करता हूँ, करती हूँ। तो ये जो दृढ़ता है ना, उस अनुसार हमें मदद मिलता है, बहुत कुछ होता है, जादू होता है। सी बाबा ने एक मुरली में कहा, सी नियम पालन में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बाबा ने कहा जब भक्ति मीरा की विष अमृत हो सकता है, बच्चे मैं आपके लिए नहीं नीचे आ सकता हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ विश्वास रखो ना। पहले ही कह देते हो, होता नहीं, होगा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा वैसे, फिर उसमें बाबा जो मदद देना चाहता है वो रुक के देखेगा क्या करता है वो। तो इसीलिए इन बातों की परिवर्तन, कंप्लीट परिवर्तन, कहीं भी कोई भी नियम की श्रीमत या कोई भी स्थिति की प्रति जो डायरेक्शन, जैसी डायरेक्शन से, उसमें परिवर्तन कंप्लीट लाना है। कुछ भी आपके आगे आए, आप एकदम स्थिर अचल अटल योगी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ये परिवर्तन इस मास, शिव जयंती का ये मास है, शिव बाबा के लिए व्रत रखिए, ये परिवर्तन कीजिए। अमृत वेले से लेकर के अमृत वेला निद्रा जीत, ये परिवर्तन चाहिए। क्लास एक अलर्ट, बाबा जो संकल्प से बैठो बोलता है वैसे। तो ये छोटी छोटी बातें, नियम और सुबह की अमृत वेला और क्लास, इसको और शाम की योग अगर दफ्तर में तो वहीं करिए, लेकिन इनमें कंपलसरी बदलाव लाइए, ताकि आपका जीवन अच्छा हो जाए, एकदम विजयी बन जाइए। जो भी हमारे इतने सारा जो प्रोजेक्ट्स है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कुछ भी लीजिए, लेकिन फंडामेंटल बातों को लूज नहीं करना है। जो बाबा की योगी जीवन की बेसिक बातें है ना, नियम है ना, वो हमारी योगी स्थिति में सिद्धि स्वरूप में आने के लिए ये फाउंडेशन की बातें, अगर उसमें लूज रहेंगे वहां तक तो पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति। आप सबको बहुत थैंक्स है, क्योंकि इतने दिन सारा दिन सुन ही रहे थे, आपके सुनने की अकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है, बाबा भी आपको बहुत 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 ताकत देता है, और हम तो बहुत थैंक्स देते हैं। वाह बाबा, आपके बच्चों की इतनी जबरदस्त ताकत, दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू,
खास स्पार्क बनोगे, खास स्पार्क टीम,
ट्रांस स्पार्क भाई बहन, आप सब में बहुत अच्छे गुण है, छोटी छोटी बात में बदलना है अभी, सब बहुत अच्छे हो, अच्छाई का तो वर्णन ही नहीं कर सकते, एक एक बच्चे का शास्त्र बन जाए, लेकिन छोटी छोटी बात में आपकी जो सिद्धि है ना उधर, वो नीचे ना आ जाए। थैंक यू।
एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, रामलोचन भाई का खास रिक्वेस्ट आया था कि आज कई प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, तो जो वीआईपी डाइनिंग में स्पार्क वाले भोजन कर रहे हैं वो लंच तक रहेगी, शाम से फिर नहीं होगा। जो रात्रि भोजन आप सभी बड़े डाइनिंग में करेंगे, जिनकी जो संपर्क है वीआईपी में खाने का, अपने संपर्क यूज करो, स्पार्क की तरफ से वीआईपी डाइनिंग लंच के बाद क्लोज। अब शांति, अब वहां जाके बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना, फिर बड़े डाइनिंग में सबको भोजन करना है।
अंबिका दीदी से हमने सुना, थैंक यू दीदी। अभी हम अलका दीदी भी हमारे बीच में बैठे हैं, दीदी आप भी दो मिनट बताएं।
ओम शांति। तो हम सभी अपने अच्छे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों को लेकर के यहाँ से तैयार होके चल रहे, और विशेष ये सिल्वर जुबली का वर्ष जो मैं अनेकानेक बाबा के बिछड़े हुए बच्चों को वापस बाबा से मिलाने का बहुत बड़ा कार्य करना
है। 5 मिनट बैठिए, प्लीज मत उठिए।
और इस कार्य को सफल करने के लिए विशेष जो 25 भट्टियां चलेगी वो भी विशेष इसमें सहयोगी रहेगी, क्योंकि योगी सब कार्य को सफल करता है, और साथ साथ हम पर्सनल अपनी तरफ से हर एक रोज 10 से 15 मिनट ऐसा योग करें कि हम के हमारे द्वारा करण करावनार बाबा कुछ ऐसा अपना रहा हुआ विशेष कार्य कराने के लिए हमें निमित्त बनाए। तो ऐसे हर एक अपने आप को बाबा के सामने ऑफर करें कि बाबा हम तैयार हैं और आप हमारे से कुछ तो कराओ ऐसा विशेष, जिसके द्वारा ये स्पार्क की सेवाएं सिर्फ नहीं लेकिन यज्ञ की विशेष सेवाएं जो बाबा के कार्य को प्रत्यक्ष करने के लिए मददगार बने, तो ऐसा हम श्रेष्ठ शुभ संकल्प लेकर के यहाँ से चलेंगे कि हमारा 10-15 मिनट का पावरफुल योग, जिसमें हम अपने आप को बिंदु स्वरूप में टिका कर बाबा से फुल पावर लेकर के उन विशेष आत्माओं को देख करके उन सभी को यज्ञ सेवा के लिए, यज्ञ के कार्य को परिपूर्ण करने के लिए हम आह्वान करेंगे और उसके लिए बाबा हमें निमित्त बनाए, ये श्रेष्ठ संकल्प रखना कि अगर ऐसा शुभ कार्य बाबा मेरे हाथों से कराए तो मुझे बहुत बेहद खुशी होंगी और बेहद भाग्य बनेगा। तो ये शुभ संकल्प लेकर के हम सब चलेंगे यहाँ से, मंजूर है? हाँ, चलेगा। हाँ श्रीकांत, ये सबका सहयोग हमको यज्ञ सेवा में मिलेगा, क्योंकि रमेश भाई जी का संकल्प यही था कि हमें यज्ञ के लिए कुछ करना है। यज्ञ के लिए हमने कुछ नहीं किया तो हमारा जीवन सफल नहीं हुआ है। अपने आप के लिए जीना तो हर एक जीता है, पंछी भी जी लेता है, जैसे ब्राह्मण भी अपने आप के लिए जी लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने यज्ञ के लिए क्या किया, मेरे द्वारा यज्ञ के लिए क्या सेवा हुई, ये विशेष हमें सोचना है और इसके लिए निमित्त बनने का संकल्प रखना। करावनहार करा लेगा। ओम शांति।
नीलिमा दीदी को भी हम कहेंगे, दीदी आप भी बताएं, आप शुरू से ही स्पार्क के साथ जुड़े हैं और रमेश भाई के साथ भी आपने बहुत पालना ली है।
ओम शांति। मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि स्पार्क की शुरुआत रमेश भाई जी के द्वारा हमारे सेंटर पर हुई और एक छोटा सा ग्रुप था, 2-4 जन का, जैसे मुकुल भाई है, अनुराग भाई है, और तो एक 2-4 जन मिलकर के उन्होंने स्पार्क के संबंध में पहली मीटिंग जो थी वो विक्रोली में हुई और उसके बाद फिर ये स्पार्क का बढ़ता गया। तो आज मैं आप सबको इतना ही कहूंगी कि जो हम सभी आए हैं, आप सभी आए हैं, कई पहली बार आए हैं जहाँ पर स्पार्क का काम नहीं हो रहा है, वो सभी एक संकल्प जरूर लें कि अपने सेंटर पर जाकर अपनी दीदी की परमिशन से 5 भाई बहन भी सही पर वो इकट्ठा हो और हर 15 दिन में एक बार आपस में बैठ करके और प्लानिंग करें, पुरुषार्थ की बातें करें, भट्टी करें और हर कोई को संकल्प लेना है कि मेरा सेंटर भी एक लोकल चैप्टर बन जाए। तो ये संकल्प लेकर के सब जाएंगे तो आज कितने सारे लोकल चैप्टर खुलेंगे। और ये मुझे प्रेरणा बहुत अच्छी मिली नासिक सेंटर पर, हर 15 दिन में सब इकट्ठे होते हैं और अपने पुरुषार्थ की लेन देन करते हैं। तो आप सभी ये संकल्प जरूर लेकर के जाना। जिनके सेंटर पे स्पार्क नहीं हो रहा है वो जरा हाथ ऊंचा करेंगे। स्पार्क एक्टिविटीज करीब 50% से भी ज्यादा है, तो सब के सब ये जरूर संकल्प लेकर के चलेंगे कि जाते ही हम 5 जन की कमिटी बनाएंगे और लोकल चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहले भट्टी, 15 दिन के बाद आपस में मिलना, फिर आपका रिपोर्ट देख के और हमारे श्रीकांत भाई आपको जरूर परमिशन दे देंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।
सभी 2-3 अनाउंसमेंट सभी ध्यान से सुनेंगे। जो आपको बैज डिपार्टमेंट, लाइट साउंड और वीडियो डिपार्टमेंट सबने हमें बहुत सहयोग दिया, उन सब के लिए दिल से दुआ, सभी ताली बजाए और हम बाबा की तरफ से, पूरे स्पार्क की तरफ से इन सभी डिपार्टमेंट्स का, जो भी बिल्डिंग्स में आप रहे, चाहे वो वैकुंठ धाम हो, त्रिलोक और दिव्य लोक, सभी जिन्होंने हमें सूक्ष्म में या स्थूल में सहयोग दिया है। और सबसे पहले तो बाप दादा का ध्यान धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने आपको बुलाया है ना बाबा घर, उनके दिल से धन्यवाद, आप सबका दिल से धन्यवाद। आप नहीं आएंगे प्रोग्राम किसके लिए रखेंगे हम। और साथ में हमारे साथ जो भी हमारे ऑफिस की सेवाधारी दिन रात 2 महीने से हमें मदद कर रहे हैं, सभी ऑफिस की सेवाधारी और जो भी बाहर से अलग अलग
सेंटर से आए थे सेवा के लिए उनकी धन्यवाद, जो भोजन खिलाने के लिए और शांतिवन में अलग अलग डिपार्टमेंट में खास इस प्रोग्राम के लिए आए थे उनकी भी दिल से अंबिका बहन की तरफ से पूरे साफ स्पार्क टीम की तरफ से धन्यवाद। ओम शांति। हाँ, सबसे बड़ी बात है आपको बीच बीच में रिफ्रेशमेंट मिलता है ना, टोली हा? टोली जो लाए हैं कुछ नाम मुझे याद है, जैसे कल्याण सेंटर से, पुणे नासिक, पुणे दुर्ग, और जो बात जो जो भी लाए हैं बाबा के, जिनकी नाम नहीं लेते हैं बाबा धन्यवाद करता है उनकी, कुछ याद है इसलिए जो जो टोली लाए हैं सबकी रिफ्रेशमेंट हुआ, सभी दुआ देते हैं। एक बहन मेरे से मिलने के लिए आई थी 2 महीने पहले, बोला श्रीकांत भाई मैं अभी वापस मैंने कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ, वहीं पे रहूंगी लेकिन स्पार्क मीटिंग मिस तो करूंगी ही, लेकिन एक चीज मिस होगी वो है बीच बीच में ब्रेक कुछ टोली मिलती है, आप सोचिए। तो जिन्होंने भी मेहनत करके टोली लाते हैं उनको दिल से दुआ भी मिल रहे हैं, हम सभी एक बार सबके लिए जिनके नाम लिया या नहीं लिया दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीकांत भाई के लिए जोरदार तालियों से हम उनका धन्यवाद।
श्रीकांत भाई आपके साथ हैं, अलग नहीं है।
धन्यवाद।
अभी सभी 2 मिनट बड़े पावरफुल याद करेंगे, 2 मिनट सिर्फ। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति, और 2 मिनट में 120 सेकंड। इस 120 सेकंड को इतना साइलेंस हो जाए, बाबा कहते हैं हम जब से आप आए हैं, जब मधुबन में प्रवेश किए और अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया सुना, और बड़ों की उम्मीद, बाप दादा की उम्मीद, और जो भी स्पार्क के बड़े उनकी उम्मीद, उन सभी बातों पर हम खरा उतरे, साकार रूप में करें, इसके लिए खास बाबा से जुड़ जाए 2 मिनट के लिए, बस बाबा के सम्मुख समर्पित हो जाए, बाबा को समर्पित हो जाए, बाबा आपके द्वारा करेगा ही। ओम शांति। जो भी टोली लाए हैं हम रिक्वेस्ट करेंगे मेडिटेशन के बाद आप बैठेंगे यहाँ पे तो आपको स्टेज के ऊपर से टोली दिया जाएगा रिटर्न में। ओम शांति।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा
डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं,
सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं,
नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो,
मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं,
नाम सितारों में अपना लिखाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
तो मिनट आपकी सहयोग चाहिए। विदेशी भाई बहन आए हैं, उन सब मिल नहीं पाए। हम रिक्वेस्ट करेंगे जो विदेश की भाई बहन है पार्टिसिपेट किए थे, आप थोड़ा स्टेज पर आएंगे, बहुत कम संख्या लेकिन प्लीज उठिए, नहीं उनको भी हम कंग्रेचुलेट करना है। विदेश की भाई बहन है जो भी दुबई से और सभी आपको देखना चाहेंगे, आप सब बीच में आए थे, प्लीज आप स्टेज पर आए। दो मिनट सभी स्पार्क के भाई बहनों को निवेदन, दो मिनट बस बैठिए। आप देखिए इतने दूर से वो खास इस मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। हम दिल से दुआ देंगे उनको और कहेंगे कि वो भी अगले साल 1-10 को लेकर के आएंगे। आइए जी,
1 will bring 10 next time. So, all the brothers and sisters, 1 will bring 10. That's what Shikhand Bhai is telling.
Sister Barbara, she's from original from Switzerland, but come from UK. A brother Pavel from South Africa, Czechia. Sister Veronica from Czechoslovakia. Sister Sun from Malaysia, brother Tapan and Madhuban from Dubai, brother Rodrigo from Brazil. Big hands up ke liye. और एक खुशी की बात, हर वर्ष स्पार्क की मीटिंग इंटरनेशनल होता ही है, तो 1 home touch फॉर यू, नेक्स्ट ईयर यू विल ब्रिंग 10. हाँ, जस्ट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस जस्ट फ्यू सेकंड।
इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू डाइव इनटू एन इंटेंस spiritual knowledge and yoga session, so you can forget the world and all the troubles we have to face out there and just concentrate on spiritual progress. Thanks to all of you. Yes, yes, it's always inspiring and refreshing and giving new enthusiasm and zeal.
Om Shanti. I just want to express my love and appreciation for Spark, because for me it's a really big model of educational approach in spiritual education, and I enjoy all sessions so much, and I express special gratitude to Ambika, sister, Didi Ambika, because she gives very traditional, very deep experience of yoga, and her individual style for me is very, very valuable. And I want to say thank you to Shrikant Bhai, who is the embodiment of love and happiness and all virtues, which are very rare now in this world. And thank you for all of us who create this atmosphere, this aura of acceptance, of kindness, and I really am very happy. Om Shanti.
Om Shanti. I really must admire the organizational work, because if I compare it with my first Spark meeting, which was held in Gyansarovar, and we were 9 there, and I can see the hall here and all the enthusiastic participants, so I really have to say that this is probably the fastest progressing wing which I can see within Yagya. So again, great regards to organizers.
Om Shanti. This is my second Spark meeting. My first meeting is many, many years ago. That time I think it is small in Gyansarovar, and now it has grown so many multiple times, and I'm very happy, and congratulations to Spark itself. My dear second meeting, I'm very happy. It is actually came across through the invitation by Didi Ambika and Brother Srikan when they were visiting Malaysia. So I happened to be in some conversation. He was telling about this program, and that's how I came to this program. Actually, without my senior's approval, I just came in. But when I'm here, I got my Didi, Dr. Navara and Mira Didi clearance. For this program, I would say that, yes, really, Spark has grown so fast, and it has actually crossed such a milestone that I can see such a great research being done. Actually, my interest in Spark is because I have a lot of interest in research, which until now I think I have not given myself the chance to go further into that. Because for me personally, when I do things, I prefer to go into the depth of the matter. Then only there's some fulfillment for me. And then only that we are able to do well. So because of that, once again, it's thankful that I have this opportunity. And also, with their presence in Malaysia, I get to know so much. And I really have so much to learn from each of them and from all of you that I believe with all these five projects and also the 25th anniversary where we have such a great plan in mind, I really think Sparks is going to be very soon do wonders for Baba. And I remember, was it Surya Bhai or one of the speakers, that Sparks is going to rock the world. Thank you.
Om Shanti. Actually, this platform is so good. I learned a lot. Although we attend Murli class, Amrit Vela, and have our own Brahmin rituals, but this platform opens everything from the deeper aspect. So understanding deeply all the aspects of our, be it dharana, be it knowledge, be it relationship with Baba, jitne bhi sab classes mein, itna depth mein tha ki I had a lot of things to imbibe and practice on myself. So this was a big takeaway from me. Another thing which was there is the spark is going so big and it's going global and many things are getting integrated onto this platform. And this gives a lot of opportunity for all of us to participate and take our, means what Baba wants, the way Baba wants to reveal himself. So that will give us a lot of opportunities to work and then make it fruitful. So all of us are free to enroll ourselves on this platform, and this is a very good platform. And that's why I must thank the organizers, Ambika Bhai in special, and Sekand Bhai, and the whole organization. And the organizational activity was conducted in such a nice way that we enjoyed a lot. And many things we have to learn, not only from personal perspective, but from organizational perspective, even going global and revealing Baba. Thanks from my heart to the whole team.
Om Shanti. Bahut hi acha laga ye spark up. This is first time for me, but I enjoy it a lot. It is the classes, specifically all the classes, it was very good and it is inspiring me. Thank you, Baba. Thanks, Shanti.
Ashaj. It's the same feeling, but I fully appreciate everything here in the meeting and retreat for two main reasons. One is the balance between yoga and presentations, holding a very elevated atmosphere so important for us. It's our aim, in fact. And second is the quality and the quantity of research already done in Spark. It was a surprise for me. In fact, I knew all the products, but when you see all together, it's another thing. I was very impressed with this. I think that now it's time for us to check in our countries how to cooperate with Spark and how to get even more benefits from the everything available, already available. Thanks, Baba. Thanks for the instruments and the whole team. And thank you all for the kindness with us, your brothers and sisters, Dabo Fanes. Om Shanti.
Inkele, big hand.
Just one more thing I must thank from the bottom of my heart, or maybe on behalf of all of us as well, for all the translators for being so tirelessly in helping us translating. Thank you.
Yes. जो टोली आई थी जहाँ जहाँ से भुवनेश्वर कल्याण नासिक हड़पसर पुणे शाहदा ओलपड़ कपड़वंच और सांगवी ये कौन से कटलाल कटलाल गुजरात से सबको बहुत धन्यवाद दुर्ग दुर्ग का बहुत धन्यवाद जिनके नाम मैंने कहा भुवनेश्वर कल्याण नासिक हड़पसर शाहदा ओलपड़ कपड़वंच कटलाल और सांगवी के भाई बहन स्टेज पर आएंगे उनको व्यंजी टोली देंगे जिनको फीडबैक फॉर्म मिले हैं सबसे निवेदन है आप अपने फीडबैक फॉर्म को काउंटर पर जमा करिए भर के
से गए थे और हमारी कैब वहाँ पे लेट हो गई थी तो हम कैब से लेट हुए थे फिर हम ट्रेन के लिए लेट हो गए थे और ट्रेन मिस हो चुकी थी तो हमने जल्दी से बाबा से पूछा कि बाबा हम क्या करें तो बाबा ने बोला था कि बच्चे तुम नेक्स्ट स्टेशन पे जाओ और जब हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे हमको पता चला कि ट्रेन डिले हो चुकी है फिर हम पहुँच गए टाइम से
Good morning.